বাহি নাহি করে তা কর সঙ্গে চিত্ত ইচ্ছা সে দে ব্রজ রস রঙ্গে চিত্ত ইচ্ছা সে দে ব্রজ রস রঙ্গে রাধিকা দাসী দি হোয়ে অভিমা রাধিকা দাসী দি হোয়ে অভি শীঘ্র মেলায় তব গোকুল কা শীঘ্র মেলায় তব গোকুল কা রাধা ভজনে দে মতে নাহি বেলা রাধা ভজনে দে মতে নাহি ভেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা কৃষ্ণ তে নাহি গেলা রাধা ভজনে দে মতে নাহি গেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা কৃষ্ণ ভজন তব ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী ব্রহ্মা শিব রাধিকা পদ রজ পূজায়ে মানি রাধিকায়া পদ রজ পূজায়ে মানে রাধিকা পদ রজ পূজায়ে মানে রাধিকা পদ রজ পূজায়ে মানে উমার মা সত্যাশ চন্দ্র উমার মা সচি চন্দ্র রুকমিণী উমার মা সত্যা সচি চন্দ্র রুকমিণী রাধা অবতার সবে আমানয়বাণী রাধা অবতার সবে আমানয়বাণী হে না রাধা পর চর্য জাকর ধনা হে না রাধা পর চর্য জাকর ধনা ভক্তি বিনোদ তারা মাঙ্গায় চরণা ভক্তি বিনোদ তারা মাঙ্গায় চ রাধা ভজন যদি মতে নাহি ভেলা রাধা ভজন যদি মতি নাহি ভেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা কৃষ্ণ ভজন তব হ্যাঁ রাধা ভজন যদি মতে নাহি ভেলা রাধা ভজন যদি মতে নাহি ভেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা কৃষ্ণ ভজন তব হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ বলিয়ে বলিয়ে राधे श्याम 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 राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रुक्मिणी द्वारकाधीश जाया रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जाया रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जया जगन्नाथा जया बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जगन्नाथा जय बलदेवा सुभद्रा जय जय गौरानिताय 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 भज गौरानिताय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री पंच तत्व गौर निताय भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इतोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की राधा अष्टमी महामहोत्सव की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज राधा अष्टमी महामहोत्सव के इस दिवस पे। इसको हटा सकते तो ये जो भजन है राधा भजन है यदि मति नाही भेला। तो आज हमारे चर्चा का विषय इसी भजन के आसपास प्रयास करेंगे कि रहे राधा भजन में अगर आपका मन नहीं लगता तो कृष्ण भजन तब अकारण गैला। सारा का सारा कृष्ण भजन जो हम करते हैं वो क्या हो जाएगा बिना किसी कॉज के बेकार हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास करें कि जब भी भगवान कृष्ण का भजन जो करता है उसको राधा रानी का भजन भी करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको भजन दे दिया क्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो इसमें जो हरे है वह श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए राधा रानी से ही हमारी दिन की शुरुआत होती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो राधा रानी का नाम आता है। तो आज उनका जन्मदिवस है, उनका प्राकट दिवस। तो वैसे तो कोई योग्यता नहीं है राधा रानी तत्व के बारे में समझे और कोई बोल पाए, तो अपने गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। जो त्रुटि हो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सीनियर डिवोटीज और भक्त वृंद मुझे क्षमा करेंगे। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ वर्णन कर पाना, वो भी वृंदावनेश्वरी। हमारे भक्तों में हमेशा उत्साह रहता है वृंदावन प्रवेश करने का। तो वृंदावन का मतलब है वृंदा महारानी, तुलसी महारानी का जो वन है वृंदावन। और वृंदावन की सेविका तो है तुलसी महारानी, परंतु वृंदावन की रानी है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। तो ऐसी राधा रानी को समझना बहुत मुश्किल है। श्रीमती राधा रानी को समझने से
पहले समझना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण को। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुने राधा अष्टमी, तो प्रभुपाद जी 40 मिनट के प्रवचन में 38 मिनट या फिर कह सकते हैं 39 मिनट्स कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं। और कृष्ण के बारे में वर्णन करने के बाद बोलते हैं भगवान कृष्ण अखल ब्रह्मांड के ईश परमेश्वर हैं, ऐसे भगवान जिनको समझ पाना अचिंत है, है ना। इतना सारा वर्णन करते हैं उनके बारे में, और सब लोग सोच रहे थे कि राधाष्टमी का प्रवचन कब होगा, राधा रानी के बारे में कब बताए। तो प्रभुपाद जी ने अंत में कहा कुरैसी जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण को अपने वश में कर लेती हैं, है ना। तो बस अब आप समझ लीजिए अखिल ब्रह्मांड जो परमेश्वर है उसको वश में करने वाली जो है वो राधा रानी है। तो अपने आप ही गुणगान हो जाता है। कैसे कहा जाता है, जैसे हमारे गुरुजन बताते हैं कि इस संसार में बहु ईश्वर है, हम लोग भी इसे ईश्वर है ना, मकान मालिक ये भी तो ईश्वर होता है, मकान मालिक है मकान। तो बोलते हैं कि किसी ने कहा सबका मालिक एक, तो मकान मालिक खुश हो जाता है मैं ही मालिक हूं। लेकिन सच्चाई ये है बहुत मालिक हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सभी अपने आप में एक ईश्वर हैं। परंतु इन ईश्वरों के ऊपर एक परमेश्वर है, कौन है? हाँ जी, सभी ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है, राम नरसिंह वामन चिरोदक्षाय विष्णु, है ना, ये सारे के सारे परमेश्वर हैं। परमेश्वर के ऊपर भी एक है परात परमेश्वर, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि 24 अवतार लेकर हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे भगवान अनंत अवतारों में अपना विस्तार करते हैं, हर मनुष्य जीव के अंदर परमात्मा रूप में चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक के अंदर विराजमान भगवान, विस्तार करने वाले भगवान, वो परमेश्वर के रूप में आते हैं और फिर परमेश्वर से अपना 33 करोड़ देवताओं और देवियों के रूप में अपना विस्तार ईश्वर के रूप में करते हैं। ऐसे परात परमेश्वर को वश में करने वाली है परात परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की। तो ऐसी राधा रानी के विभिन्न लीलाएं हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए आज, क्योंकि उनका बर्थडे, वैसे तो भगवान कृष्ण का जन्म और राधा रानी का जन्म नहीं होता, भगवान कहते हैं जन्म करम च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, तो तत्व से जो जानना पड़ेगा। तो राधा रानी कौन है इसको समझना चाहिए। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की 3 सच्चित आनंद शक्तियों में से जो आनंद शक्ति है हलादिनी शक्ति, उसका विस्तार रूप में है। भगवान कृष्ण जब बैठे थे अपने रास मंडल के अंदर, सोच रहे थे कि संसार में आनंद के लिए कुछ तो होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए एक पार्टनर होना चाहिए या सेवक होना चाहिए, कोई व्यक्ति अकेला इस संसार में आनंद नहीं ले सकता, उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए। तो भगवान क्योंकि पर्सनालिटी है, एक मनुष्य रूप में है, लेकिन है सच्चिदानंद, दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है, परंतु फिर भी हमारी जो भावना है वो विकृत रूप में आई है, परंतु शुद्ध रूप में भगवान से ही आई है। तो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनके मन में आनंद की अभिलाषा, तो उनके शरीर से आनंद शक्ति जो भगवान की है उसने विस्तार लिया और पूरे रासमंडल में भागने लग गई कि जाऊं तो कैसे अपने ठाकुर जी की सेवा करूं, है ना। मतलब प्रकट होते ही पहला नियम क्या है? सेवा। सेवा कैसे करूं, है ना। इसके उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद, है ना, सेवा के लिए वृंदावन त्याग करके कहां चले जाते हैं? अमेरिका। और उसके उदाहरण है प्रभुपाद जी के शिष्य जैसे हिदोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि 75 साल की उम्र में भी लगे हैं सेवा करने के लिए अपने गुरुदेव की। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, वो शिक्षा देती हैं कैसे भगवान कृष्ण की सेवा की जाए। तो मैं विचार कर रहा था, हो सकता है मैं गलत भी हूं तो मुझे आप ठीक करिएगा, भगवान कृष्ण से बलराम जी विस्तरित होते हैं, और बलराम जी से सारे अवतार, चाहे हम विष्णु अवतारों की बात करें चाहे राम नरसिंह की, सब बलराम जी से अवतरित होते हैं, और जितने भी शक्ति अवतार हैं ये सब के सब राधा रानी से अवतरित होते हैं। तो भगवान बीच में कृष्ण खड़े हैं, इधर शक्ति है श्रीमती राधा रानी, इधर बलराम है, बलराम से सारे पुरुष अवतार, राधा रानी से सारे स्त्री अवतार। तो और ये दोनों कौन है? गुरु तत्व, बलराम जी भी गुरु राधा रानी भी गुरु, और दोनों शिक्षा क्या दे रहे हैं? सेवा कैसे की जाए भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि राधा भजन यदि मति नाही गेला, अगर राधा रानी को नहीं समझ पाए कृष्ण भजन तब अकारण गेला, उस व्यक्ति का कृष्ण भजन निस्तारित विकार हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है श्रीमती राधा रानी को तत्व से समझना। तो ऐसी राधा रानी जब भाग रही थी उस रास मंडल में, तो भागने के कारण, भागने को धावा करना बोलते हैं, धावा मतलब भागना, और रास मंडल था जहां भगवान रास नृत्य करते हैं युवा अवस्था में, तो भगवान ऐसे रास मंडल का रा और धावा भागने के कारण धा, श्रीमती राधा रानी का नाम हमेशा के लिए एटर्नलिटी से क्या पड़ गया, रा धा, जो रास मंडल में भाग रही हैं ताकि पुष्प चुनू और ठाकुर जी की सेवा करूं, कृष्ण की सेवा करूं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का ये राधा नाम, ये कोई ऐसा नहीं कि वृषभानु महाराज के घर जन्म हुआ, बेटे का नाम क्या रखें, चिंकी रखें कि पिंकी रखें, चलो राधा रख देते हैं, ऐसा नहीं हुआ है ना। इसलिए लोग अपने बच्चों का नाम राधा रख लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है राधा नाम जो है ये बहुत दिव्य नाम है, और इसको लेना हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इस्कॉन जीबीसी ने बोला कि राधे राधे भजन नहीं कर सकते। आज के दिन अलाउ किया गया है कि राधाष्टमी में थोड़ा कर सकते हैं, परंतु रोज 364 दिन राधा रानी का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि राधा रानी का नाम जो ये राधा है, प्रभुपाद जी ने इसको श्रीमती राधा रानी, वो रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी है ना, तो हर एक ग्रंथ में आप देखेंगे श्रीमती राधा रानी। हम किसी का भी नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ऑफिशियल नेम हो, जैसे मान लीजिए देवानंद एक ऑफिशियल नेम है, तो उसके ऑफिस के लोग उसको देवानंद के नाम से जानते हैं, मिस्टर देवानंद वर्मा या शर्मा, लेकिन उसके घर के लोग उसे देवू कहते हैं, ओ देवू। तो वृंदावन का जो वास करते हैं या वृंदावन वासी हैं, व्रज जन वासी जिनके हृदय में वृंदावन है, या फिर जो वृंदावन वास करते हैं, वृंदावन में रहते हैं भगवान की इच्छा अनुसार, उनको ये इजाजत है कि वो निकनेम बुला सकते हैं, है ना। निकनेम जैसे देवानंद का निकनेम घर में देवू, लेकिन बाहर जाके अगर कोई ऑफिस में बोले देवू इधर आ, मेरी पर्सनैलिटी को आपने वो कर, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को कंट्रोल करने वाली द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड इज श्रीमती राधा रानी, उनको हम राधा कहके बुलाए तो ये उनका अपमान हो जाता है। कहते हैं कि वैष्णवों के प्रति अपराध करने से अपराध राधा रानी दूर हो जाती है ना, राधा रानी की सेवा नहीं मिलती है, अपराध राधा रानी, अपराध किया तो राधा रानी से दूर। तो सोचिए राधा के प्रति अपराध किया तो कहां जाएंगे। तो इसीलिए उनको बड़े ही सम्मान से श्रीमती राधा रानी उनका ऑफिशियल नेम है, ऐसे हमको बोलना चाहिए। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी आज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष अष्टमी में जन्म लेते हैं कृष्ण, और जो शुक्ल पक्ष अष्टमी में जन्म लेती हैं आज के दिन श्रीमती राधा रानी, और आज सुबह ही सजीवती प्रभु बता रहे थे सोमवार का ही दिवस था जो आज है श्रीमती राधा रानी का, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं सोमवार को राधा रानी है और सोमवार के दिन ही हम लोग उनके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी के विस्तार की अनेकों लीलाएं हैं। रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है ललित माधव, जिसमें सुबह अमोघ पूजी बता रहे थे उस ग्रंथ से, तो ललित माधव ग्रंथ में अनेकों लीलाएं हैं, कल्प के अंदर अलग अलग प्रकार से श्रीमती राधा रानी की प्राकट हुआ है। जैसे श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं, कई वीडियोस या ऐसी जगह लिखा जाता है जनरली कि यमुना के किनारे 1000 पत्तियों वाले एक कमल के ऊपर वृषभानु महाराज उनके पिता और कीर्तिदा उनकी माता, उनके घर में कोई पुत्र संतान नहीं थी या पुत्री नहीं थी, और बड़े ही अभिलाषी थे कि हमारे घर में संतान, तो उनको यमुना के किनारे 1000 पेटल्स 1000 पंखड़ियों वाले कमल के ऊपर एक ऐसी तप्त कांचन गौरांगी है। तप्त कांचन गौरांगी का मतलब है कांचन होता है सोना, और पिघला हुआ सोना होता है उसे बोलते हैं मोल्टन गोल्डन फॉर्म, मोल्टन गोल्डन। एक होता है गोल्ड, तो सोने की चमक उतनी नहीं होती है, कभी आप सोने की फैक्ट्री में जाएं जहां पिघला हुआ सोना हो वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का रंग है, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी ऐसे कर लेंगे आप। तो सोचिए जरा कि तप्त कांचन, तप्त मतलब गरम, कांचन गौरांगी गोरे रंग की राधे वृंदावनेश्वरी, ऐसी वृंदावनेश्वरी का रंग जो है ना हम पेंट भी नहीं कर सकते कभी, क्योंकि कलर ही नहीं बना, मोल्टन गोल्डन तो पिघला हुआ कैसे यूज करेंगे उसको। तो सिर्फ जो हम कलर करते हैं अपने विचार से करते हैं, हम सोच नहीं सकते अचिंत्य सुंदरता का जो एक प्रतीक होता है वह श्रीमती राधा रानी, मोस्ट ब्यूटिफुल है ना। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कमल की पंखड़ियों से आई उनके घर पर, और एक लीला में वर्णन आता है राधा रानी का जो जन्म है ये स्थान अधिकतर जनरली लोग बरसाना जानते हैं, बरसाना में प्रकट हुई, परंतु राधा रानी का जन्म स्थान है रावल, जो कि महावन के अंदर 84 कोस ब्रजमंडल में जो 12 द्वादश वन है उसमें महावन के अंदर एक स्थान है रावल, उस रावल में श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। आज भी आप वहां दर्शन करने जाएंगे, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू लेकर गोपाल है, ऐसे ही लड्डू गोपाली लाडली लाली श्रीमती राधा रानी का मंदिर का दर्शन होता है। तो स्पेशल दर्शन, छोटे से घुटनों के बल चलती हुई राधा रानी। तो राधा रानी का जन्म हुआ रावल में और कृष्ण का जन्म हुआ नंदगांव गोकुल महावन में। तो ये नंदगांव जो बाद में पड़ा बरसाना के पास, ये 2.5 वर्ष की उम्र में वृषभानु महाराज और नंद बाबा ने डिसाइड किया, इतने राक्षस आते हैं हमारे बच्चों को वध करने के प्रयास करते हैं कृष्ण का, तो यहां से पलायन करते हैं। तो वृंदावन से होते हुए कीर्तन करते हुए वो लोग आए इन अनेक स्थानों पे। तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि हमने सुना है कि कृष्ण और राधा जो इस संसार की राधा रानी ब्रह्मांड की नायिका और नायक है, हीरो हीरोइन हो, वो आ रहे हैं, तो देवी देवताओं ने कहा हमें भी थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए। तो शिव जी बोले कि मैं कृष्ण की सेवा ले लेता हूं और ब्रह्मा जी बोले मैं राधा रानी की सेवा ले लेता हूं। तो शिव जी जो है वो नंदीश्वर पर्वत बनकर के नंदगांव में विराजमान हुए और नंद बाबा ने उसके ऊपर अपना महल बसाया ताकि ऊंचे रहेंगे तो राक्षस नहीं आएंगे। और दूसरी जगह ब्रह्मा जी ने बसाया बरसाना, जहां पर वृषभानु महाराज बरसाना में आए ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? हाँ जी, कब कंफ्यूजन है किसी किसी को, कितने हैं? तो 4 जो सिर हैं वे अलग अलग, चारों वेद बोलते रहते हैं, वेद वाक्य हमेशा निकलते रहते हैं। और चतुश्लोक की भागवत सुना ब्रह्मा जी ने तो एक से एक श्लोक, दूसरे दूसरा, तीसरे तीसरा, चतुश्लोक की भागवत हमेशा चलती रहती है निरंतर, है ना। एक श्लोक ट्रांसफर होता है, इन्होंने एक श्लोक बोल दिया, फिर ये मुख बोलेगा, फिर ये बोलेगा, तब तक वैसे रिट्रेट होता रहता है। हरे कृष्णा महामंत्र का जपामाला चलता है ना, चतुश्लोक की भागवत। बाद में भागवत 18,000 श्लोकों में अवतरित हुआ वेद व्यासी के द्वारा। तो इस प्रकार से जो ये 4 मुख हैं, ये बरसाना में 4 पहाड़ बन जाते हैं, है ना। मानगढ़ जहां पर राधा रानी की मान लीलाएं होती हैं, विलासगढ़ जहां पर राधा रानी की विलासपूर्ण रासमंडल लीलाएं होती हैं, और एक है दानगढ़, दानगढ़ में राधा रानी की दान घाटी लीलाएं होती हैं, जहां सांखरी कोर नामक स्थान आता है। और एक जगह है जिस पर भगवान के पिता वृषभानु महाराज ने महल बनाया, उसे बोलते हैं भानुगढ़ या फिर भानगढ़। तो भानुगढ़ मतलब वृषभानु महाराज का गढ़। तो इस प्रकार से चतुर्मुखी ब्रह्मा के 4 मुखों के ऊपर 4 पहाड़। और ये क्यों बने? ताकि नायक नायिका के कारण अनेकों व्रजवासी भक्त हमारे ऊपर अपनी चरण रज डालेंगे। इसीलिए इस भजन के अंदर लिखा गया, यहां पर आता है, चित इच्छासी जदि व्रज रस रंगे। हमारी चित में यही इच्छा होती है कि व्रज का रस का रंग प्राप्त हो जाए। और कौन सा रस प्राप्त होना चाहिए? तो यहां पर लिखा है रज के बारे में वर्णन आया है कि जो उनकी चरण रज है भक्तों की, वो हमको प्राप्त हो जाए। राधिका पद रज पूजय मानी, राधा रानी के रज का पूजन कर ले देवी देवता तो उनका। संसार में लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं, वो जानते नहीं संसार की श्रेष्ठ देवी हैं श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे जो ये वृषभानु महाराज हैं, इनके 5 भाई थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। ये 5 भाई रावल में रहते थे और इन 5ों में से सबसे उत्तम वैष्णव थे वृषभानु महाराज। और उन्होंने काफी राजसूय यज्ञ किए थे, युधिष्ठिर महाराज ने जिस प्रकार राजसूय यज्ञ किए। तो राजसूय यज्ञ करने से अगर अगर कोई व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है तो कहा जाता है कि वो राजा बनने योग्य हो गया है। तो वृषभानु महाराज ने इतने राजसूय यज्ञ किए, परम वैष्णव थे, और उन्होंने 5ों भाइयों ने डिसाइड किया कि वृषभानु महाराज को किंग बनाया जाए। तो रावल के राजा भी वृषभानु महाराज थे, और उनकी पत्नी जो कीर्तिदा थी, उनके पिता का नाम था विंदु और मुखरी, मुखरा उनकी पत्नी का नाम था, मुखरा और विंदु, इनके 8 बच्चे थे जिसमें से 5 बेटे और 3 बेटियां। 5 बेटों के नाम थे भद्र कीर्ति, चंद्र कीर्ति, महाकीर्ति, महाबल और श्रीदाम। श्रीदाम भगवान का मित्र भी था और राधा रानी का भाई भी। और 3 बहनें मतलब 3 पुत्रियां थी, भानुमुद्रा, कीर्तिदा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। तो ये तीन पुत्रियां, पांच पुत्र, आठ बच्चे विंदु और मुखरा के, और इधर जो वृषभानु महाराज हैं ये पांच भाई, तो इसमें से वृषभानु महाराज का विवाह कीर्तिदा से हुआ। कीर्तिदा और वृषभानु के घर पे रावल में बहुत खुशियां मनाई गई, राजा रानी तो हैं परंतु संतान नहीं है। तो कहा कैसी होगी संतान, तो बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो होता है माताओं की आदत होती है व्रत आदि रखवा देती है ना हस्बैंड को कि व्रत कर लो ये वाला। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इस भारत में, नॉर्थ इंडिया में, इसमें तो विशेषकर भगवान की लीला है, लेकिन यहां पर देवी उपासना को बहुत ज्यादा है ना प्रचलित किया गया है। वो भी भगवान की इच्छा थी। जब भगवान का जन्म हुआ तो योग माया ने भगवान की मदद करी, तो योग माया को भगवान ने वरदान दिया, तुमने मेरी सेवा की है, आने वाले समय में तुम नौ रूपों में पूजी जाओगे, और नौ रूपों का वर्णन भी भागवत में हुआ है ना, दुर्गा के रूप में, कुशमुंडा के रूप में है ना, भद्रकाली के रूप में तुम पूजी जाओगे। भगवान का आशीर्वाद था इसलिए देवियां उत्पन्न हुई। तो एक देवी है जिनका नाम है कात्यायनी। तो भगवान की वस्त्र हरण लीला में भी कात्यायनी माता का वर्णन आता है, और राधा रानी के जन्म में भी ललित माधव में आता है वर्णन। रूप गोस्वामी करते हैं कि ये जो है इनके पिता वृषभानु महाराज को उनकी पत्नी कीर्तिदा ने कहा, क्यों नहीं आप कात्यायनी का भजन करते हो। कात्यायनी ने बहुत लोगों को बच्चे दिए आशीर्वाद में, आप भी एक संतान ले लो। तो वो चले गए भजन करने के लिए, और कात्यायनी माता के मंदिर में जाके रोज बैठते थे और कात्यायनी मंत्र का उच्चारण करते थे। भगवान की निष्ठा थी परंतु पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वो भी कर लेते थे। तो इस प्रकार से जब वो कर रहे थे तो कात्यायनी माता ने एक दिन उनके सामने वृषभानु महाराज को एक मंत्र उच्चारण किया। मंदिर के अंदर से विग्रह से आवाज आ रही है, क्या कहा, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धे न जायते। हरि नाम बिना वत्स, हे वत्स, हरि नाम के बिना कर्ण शुद्धे न जायते, कर्ण की शुद्धि नहीं होती है। तस्मात श्रेयकरम राजन, इससे अच्छा है राजन हरि नाम अनुकीर्तनम, अगर आप हरि नाम करोगे, ग्रहण हरि नामानी यथा क्रमा विनंदति, क्रम में तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, हरि नाम एव अनुकीर्तनम, सिर्फ हरि नाम कीर्तन। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेरी पूजा नहीं, किसकी पूजा करो, हरि की। और फिर वहां बैठकर विश्वानु महाराज क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मंत्र तभी फल देता है जब जीवन में कोई गुरु हो, गुरु के बिना मंत्र फल नहीं देता। कान की शुद्धि हो जाएगी, मैल वैल निकल जाएगा, बढ़िया क्लीनिंग हो जाएगी, परंतु हृदय शुद्धि होगी जब जीवन में गुरु होंगे। तो कहा गुरु किसको बनाओ, तो वृषभानु महाराज के उस राज्य में गर्गाचार्य थे और एक ऋषि थे जिनका नाम था क्रतुमुनि। तो क्रतुमुनि जो थे उनके पास वृषभानु महाराज गए और कहते हैं क्रतुमुनि से कि आप मुझको है ना हरि नाम की दीक्षा दीजिए। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में भी, इस्कॉन में, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जोनस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो महाराज की कृपा से दीक्षा लेने के बाद ही व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को सही रूप में कर पाएगा। कहते हैं कि जिसने दीक्षा नहीं लिया, संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मता, उसका मंत्र निष्फल हो जाता है, लेकिन अगर उसने संप्रदाय विहीन होकर के नाम जप किया। तो यहां पर अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके आपको जो है ना कृपा कृपालु वैष्णव, करुणामय वैष्णव आपको इस हरिनाम मंत्र की दीक्षा देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट मंत्र ना, महाराज बोलते हैं ये पहले ही सीक्रेट मंत्र होता है, सीक्रेटली बताया जाता है, पर ओपन सीक्रेट है, पहले भी हरिनाम लेते हैं और दीक्षा के बाद भी हरिनाम लेते हैं। तो ये हरिनाम ऐसा सीक्रेट है जो ओपन सीक्रेट है, पहले भी तारता है और दीक्षा लेने के बाद, समर्पित होने के बाद, तो फिर व्यक्ति की गारंटी है कि वो इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु चक्र से बच ही जाएगा और भगवान की, राधा रानी की कृपा प्राप्त करेगा, है ना। क्योंकि गुरुदेव ही राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब कृपा करते हैं भक्त पे दीक्षा देकर के, तो व्यक्ति इस काबिल बनता है कि वो हरि नाम को सही तरीके से भगवान की सेवा में उपयोग करे। वरना लोग हरि नाम से अनेकों प्रकार की इच्छाएं करते हैं कि चलो कृष्ण की भक्ति करेंगे तो धन आ जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी। ये अर्थवाद का आरोप है, नाम अपराध है, कि अलग प्रकार के अर्थ लगाना। हम हरे कृष्ण मंत्र में एक ही चीज मांगते हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण हमको अपनी सेवा में लगाइए, हमको अपनी सेवा में लगाइए। तो जब गुरु ही नहीं होंगे तो सेवा क्या लगाओगे, कौन से रास्ते में लगोगे? तो इसीलिए उन्होंने कृतु महाराज, कृतु मुनि से जाकर के दीक्षा प्राप्त किया और नाम भजन किया। नाम भजन करते थे कात्यायनी मंदिर में, क्योंकि पत्नी नाराज हो जाएगी, कहेगी तुम अपना चलाते हो, मेरी बात नहीं मानते। पत्नी से मतलब वृषभानु महाराज भी डरते थे, है ना, तो कलयुग का सिम्टम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वृषभानु महाराज कात्यायनी मंदिर में बैठ के हरि नाम करने लगे, और वैष्णव शिवजी और वैष्णवी दुर्गा ये दोनों प्रसन्न होते हैं जब इनके मंदिरों में जाके हरे कृष्ण मंत्र करते। वैष्णव नाम यथाम शंभु, शंभु को वैष्णव में महान कहते हैं। निम्न गणाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतो हरि, वैष्णव नाम यथाम शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। भागवत पुराण पुराणों में 18 पुराणों में से श्रेष्ठ है। लोग बहस करते हैं शिव पुराण में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, आप तो कृष्ण को बताते हैं, राधा को बताते हैं, लेकिन बताया गया पुराणा नाम इदम तथा। जिस प्रकार से बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से सभी भगवानों में हरि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से सभी वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, है ना? तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा है जिसके कारण हम समझ पाएंगे इस चीज को। तो वहां वैष्णवी के सामने बैठकर भजन किया, वैष्णवी अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं हुई, हरि की पूजा से प्रसन्न हो गई, और क्या दिया उनको, एक वो कहते हैं ना बॉक्स डिब्बा, जो ज्वेलरी बॉक्स होता है, माताएं जानती हैं ज्वेलरी बॉक्स, समझते हैं ना आप लोग, ज्वेलरी बॉक्स दिया। और उस ज्वेलरी बॉक्स बड़ा सा डिब्बा था, वो उन्होंने सोचा मुझे धन नहीं चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था, संतान धन चाहिए था, पुत्री या पुत्र धन चाहिए, ये क्या बॉक्स दे दिया। तो वो माता कहती खोलो तो पता चल जाए, तो कहते ऐसे नहीं खोलूंगा, पत्नी के साथ में होता है ना बुनंदा ऑफर कभी कभी मिलता है, तो लोग बोलते स्क्रैच करूंगा पत्नी के सामने, क्योंकि अगर नहीं कुछ निकला तो पत्नी कहेगी तुम तो हो ही बेकार, तुमसे कुछ नहीं होने का, और पत्नी से ना निकले तो कोई बात नहीं, वह तो चल जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा आ जाएं दोनों साथ में बैठ करके डिब्बा खोलते हैं। तो खोला तो उसके अंदर से कौन निकली, कमल पुष्प के ऊपर विराजमान श्रीमती राधा रानी प्रकट हो जाती है। श्रीमती राधा रानी की, तो इस प्रकार से राधा रानी के अनेकों प्रकार से प्रकट लीला है। राधा रानी जब चरण उनके देखे गए कि सभी ऋषि मुनि गर्गाचार्य आदि आए, उन्होंने देखा 19 प्रकार के दिव्य चिन्ह उनके चरणों के अंदर हैं, 11 प्रकार के चिन्ह उनके बाएं और 8 प्रकार के चिन्ह उनके दाएं, सही है ना प्रभु जी, 11 प्रकार के बाएं और 8 प्रकार के दाएं में चिन्ह थे। चिन्ह जैसे कि ध्वजा का चिन्ह, धनुष का चिन्ह, मीन का चिन्ह, पौधों का चिन्ह, रथ का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, इस प्रकार से 19 प्रकार के दिव्य चिन्ह। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बोले मेरी बेटी भी राधा रानी है, इसका नाम राधा रानी है, तो बोलिए एक मिट्टी में पैर डालिए और फिर सामने प्रिंट करिए, देखते हैं कितने चिन्ह आते हैं, आएंगे उसमें मुहासे के चिन्ह, दाने के चिन्ह, फाफड़ी के चिन्ह, पैर की खुरट के चिन्ह, लेकिन किसी का भी एक भी दिव्य चिन्ह नहीं आएगा। जिसमें दिव्य चिन्ह हो वो है श्रीमती राधा रानी। तो कोई भी जैसे आजकल हम देखते हैं राधे माँ, ये ऐसी माँ वैसी माँ, इनके पैरों को अंदर जाके देखो 19 चिन्ह है, अगर नहीं है एक भी चिन्ह मिसिंग है तो डिस्क्वालीफाई होगा, श्रीमती राधा रानी नहीं, श्रीमती राधा रानी के चरणों में 19 चिन्ह है। इस प्रकार से ये दिव्य श्रीमती राधा रानी हमेशा नीले रंग के वस्त्र पहनती है, उनकी प्रिया है नीले रंग की साड़ी, आप देखेंगे यहाँ फोटोज लगी है ज्यादातर में नीले रंग के ड्रेस पहनी है श्रीमती राधा रानी ने। और बलराम जी को आप देखेंगे वो भी क्या पहनते हैं, नीले रंग की, इसका मतलब गुरु तत्व नीले रंग की ड्रेस पहन रहा है हमारा, शक्ति तत्व नीले रंग की, चाहे पुरुष की विस्तारित हो चाहे स्त्री विस्तारित हो, दोनों में ये नीला रंग है ये आता है। श्याम सुंदर पीत वर्ण पहनते हैं और दोनों गुरु तत्व बलराम और राधा रानी नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। 8 प्रकार की इनकी सखियां हैं जिनको कहा जाता है कयवु स्वरूपा, जैसे चक्रव्यूह स्वरूप होता है ऐसी कयवु स्वरूपा 8 रानियों से हमेशा घिरी रहती हैं चक्र के अंदर। तो ये 8 सखियां एटर्नल ऊपर से ही धाम से यहां प्रकट होती हैं, जैसे ललिता, विशाखा और चित्रा, इंदुलेखा और कौन है, चंपकलता, सुदेवी, रंगदेवी और तुंग विद्या। तो इस प्रकार से 8 सखियां जो हैं इनकी एटर्नल ऊपर से यहां पर संसार में आती हैं। तो ये हमेशा अपनी सखियों से ऐसे बैरिकेटिंग के अंदर रहती हैं, कोई इनको टच नहीं कर सकता, इवन कृष्णा, यहां तक कि कृष्ण भी जब राधा रानी मान कर लेती हैं तो 8 सखियों के चक्रव्यूह कव्यूह स्वरूप के अंदर बंद हो जाती हैं। अब वो चेकिंग करेंगे कृष्ण की पूरी जांच पड़ताल, जाने योग्य है कि नहीं अंदर, तभी अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो राधा रानी तक पहुंच जाना ये सिर्फ गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। हम नाम जप करके राधे राधे बोलते ना, राधे राधे श्याम मिला दे, जैसे राधे राधे बोलते ही श्याम खाली बैठे थे, हाँ बताओ बताओ किसको मिलना है, वे अभी कहाँ मिलना, ऐसे नहीं होता है कि राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी का नाम बड़े सम्मान से, गुरु की कृपा से, सिद्धि से, गुरु की सेवा करके प्राप्त हो सकता है। अन्यथा सोचे ऐसे ही राधे राधे बोलेंगे श्याम मिल जाएंगे, ऐसे नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये सहजिया रूप से लोग प्रचार करते हैं, उनको हमको नहीं पकड़ना है। तो आज हम दिव्य चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है 18,000 श्लोकों में। कहते हैं सनातन गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है बृहद भागवत मृत, उस बृहद भागवत मृत के अंदर सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, मैंने भी पहली बार पढ़ा, कि परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को बता रहे हैं। हमने तो यह सुना था कि परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के बाद में भगवत धाम चले जाते हैं, परंतु सनातन गोस्वामी बृहद भागवत मृत में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को कहा कि हे माता, मेरे गुरुदेव श्रील सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद भागवत का वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने 18,000 श्लोक 7 दिन 7 रात्रि तक मुझको सुनाए, एक बार भी श्रीमती राधा रानी या गोपियों का नाम नहीं आया। भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, उन 90 अध्याय में रास पंच अध्याय 5 अध्याय हैं उसके अंदर मिडिल बीच में, और वो कृष्ण का हृदय है। रास की लीला की चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, परंतु एक भी बार श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं आ रहा, क्यों? तो परीक्षित महाराज उत्तरा माता को कहते हैं कि हे माता, उन्होंने इसलिए वर्णन नहीं किया क्योंकि अगर वो एक बार भी नाम ले लेते तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता, कहे मतलब राधा बोलने के बाद तो फिर 11वां स्कंद 12वां स्कंद प्रकट ही नहीं होता, द्वारका लीला प्रकट नहीं होती, तो इसीलिए वो वर्णन ही नहीं किए। फिर भी जब रास पंच अध्याय का वर्णन चल रहा था तो उस समय सनातन गोस्वामी लिखते हैं, रहा नहीं गया सुखदेव गोस्वामी से कि बोल दूं, बस अब बोल दूं, रहा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से वर्णन किए, कहते हैं अन्य अराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम न यदम रहा। उन्होंने कहा अन्य अराधितो नूनम, इस शब्द का मतलब है अराधिता, मतलब एक ही की आराधना करने योग्य है, राधा आराधा। तो इस प्रकार से गुप्त रूप से उन्होंने वर्णन किया और अपने को कंट्रोल करके आगे बढ़ गए, उन्होंने फिर वर्णन नहीं किया, करते तो उसके बाद स्टॉप हो जाता भागवतम, फिर हमको 10वें स्कंद 10ही स्कंद मिलते हैं। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी का मैं सोच रहा था, प्रभुपाद जी ने अपनी लीला और ट्रांसलेशन में भी 10वें स्कंद तक ही किया, और उसके बाद में प्रभुपाद जी भी मैं सोच रहा था क्यों नहीं किए 11वें 12वें स्कंद का, वो तो लीला धाम के भक्त हैं। तो मैं सोच रहा था कि राधा रानी का वर्णन प्रारंभ होते ही उन्होंने सोचा होगा मैं इसके आगे क्या बोलूं, प्रभुपाद भी शुद्ध भक्त, कंठ अवरुद्ध हो गया, तो बोले कि क्या वर्णन करूं, तो फिर बोले भक्त तुम ही कर लेना, अब मुझसे कहा नहीं जाएगा। और फिर प्रभुपाद लीला धाम प्रवेश कर गए और अपने भक्तों को बोल के गए आप लोग 11वें 12वें स्कंद और 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के अनेकों अध्यायों का वर्णन आप लोग करना। तो ये देखिए आप राधा रानी का तत्व ये है, ये लोग नाचते रहते हैं, वृंदावन में जाओ आप, जगह जगह पर लिखा है, रिक्शे वाले भी सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है वो बोल सकते हैं उनका निज धाम है वृंदावन, परंतु हम लोग ऑफिशियल रूप से कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाते हैं, हम लोगों को इजाजत नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी का नाम राधे राधे कहकर, तो कोई आपको राधे राधे बोले भी तो क्या बोलना चाहिए, हाँ जी। तो इसमें प्रश्न उठता है कि हरे कृष्णा क्यों बोले, राधे राधे बोला तो इतना तो हम भी प्रभु जी गौड़िया वैष्णव, राधा रानी की कृपा है हमारे ऊपर, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के आनंद को समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं। राधा और कृष्ण बैठे थे, राधा रानी ने कृष्ण से कहा कृष्ण आपकी सेवा में जो आनंद है ना आपको भी नहीं पता कितना आनंद है, आप नहीं जान सकते। तो कृष्ण बोले सच में इतना आनंद है, तो मैं काम करता हूं, मैं तुम्हारा भाव लेकर के ना प्रकट हो जाता हूं। तो राधा रानी बोली मेरा भाव लेकर प्रकट हो जाओगे बड़े परेशान रहोगे, आपको पता है आपकी लीलाओं में आप जब मुझे छोड़ के चले जाते हो मेरा शरीर ऐसा होता है जैसे जल रहा है, पूरा शरीर जलता है, विरह वेदना को सहन नहीं कर पाओगे। ये तो राधा रानी की स्टाइल है कि वो वेदना को सहन कर लेती है, आपके बस की बात नहीं है। तो कृष्ण बोले अच्छा ऐसी बात है, तो अब मैं जरूर प्रकट होऊंगा, तुम्हारे रंग को लूंगा, तुम्हारे भाव को लूंगा और मैं प्रकट होऊंगा। तो राधा रानी ने कहा फिर तो बहुत मजा आएगा, आप भी जगह जगह बेहोश हो जाओगे, आप भी जगह जगह सर रगड़ोगे और बोलोगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्या बोलोगे कृष्णा। तो इसी बात को राधा रानी को बोला उन्होंने और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित हुए। तो ये बहुत ही गुह्यतम वार्ता है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की। तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं सब लोगों को अपने साथ लेकर के आते हैं और इनको हमें इतनी सरलता से नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम समझ पा रहे हैं। आप देखिए हमारे जितने गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सब लोगों को भगवान प्राप्त हुए वृंदावन में, है ना। गोविंद देव जी प्राप्त हुए रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी जी को मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी प्राप्त हुए, लेकिन राधा रानी प्राप्त नहीं। तो राधा रानी कैसे प्राप्त हुई? कहते हैं वासु घोष एक गीत में लिखते हैं, जो आप गौर आरती में गाते हैं ना वासु घोष, वो वासु घोष एक गीत लिखते हैं, उसमें कहते हैं यदि गौर ना हईते तबे की हईते के में न धरी ताम देया, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। राधा रानी की महिमा को कौन जान पाता यदि गौर न हईते तबे की होते, गौरंग महाप्रभु नहीं आते तो कोई राधा रानी की विरह वेदना को, उनके प्रेम को, उनके सरेंडर को, उनके शरणागति को, की सेवा भावना को समझ नहीं पाता। बहुत डिफिकल्ट है। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम की रस की सीमाएं टूट जाती हैं। अभी हम कुछ लीलाओं में वर्णन करेंगे किस प्रकार से प्रेम है, मतलब ऐसा प्रेम इस संसार में हो ही नहीं सकता। यहां कैसा प्रेम है? इंद्रिय इंद्रिय वांछा, इंद्रिय की इच्छा के लिए, और वहां क्या है? कृष्ण वांछा, कृष्ण की इच्छा के लिए। तो इस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी जो है वो दोनों का प्रेम रस को वर्णन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कुरंग रूप में अवतरित होते हैं, राधा रानी का रंग और राधा रानी का भाव लेकर के। परंतु जब यहां आते हैं तो आप देखिए इन लीलाओं को और अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रांग, और इन लीलाओं का रस, जूस होता है ना, नींबू का रस निकालते हैं तो एक बार दबाते हैं, फिर वो ऊपर से दबाते हैं, फिर देखा है नींबू पानी बनाने वाले चार नींबू इकट्ठे करके दबाते हैं वो और रस निकालने के लिए। तो और अधिक रस इस भौम वृंदावन में प्राप्त होता है जब भगवान अपने वृंदावन रास मंडल को इस संसार में व्रजमंडल में प्रकट करते हैं तो अपने सभी परिकरों के साथ श्रीमती राधा रानी के साथ यहां आते हैं। तो राधा रानी कह देती है देखो कृष्ण आप जाओ, जहां आप नहीं वहां मैं नहीं। उन्होंने कहा अरे राधे रानी आप कैसी बात करती हैं, जहां शक्तिमान वहां उसकी शक्ति। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पहले जाओ, बड़े छलिया हो, आप अकेले चले जाओगे और फिर है ना मैं फंस जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चलो। तो उन्होंने मानी नहीं, कहा ठीक है पहले मैं जाता हूं फिर तुम आना। तो कई जगह लोग वर्णन करते हैं कि अष्टमी को कृष्ण आए और 15 दिन बाद राधा रानी आए। परंतु हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त हैं वृंदा, उनका नाम है वृंदावन दास ब्रह्मचारी, क्या नाम है, तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार, नाम मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है। तो वो पुस्तक में लिखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जन्म 1 वर्ष 15 दिन बाद हुआ। तो इस बात की पुष्टि कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है एक लीला से कि श्रीमती राधा रानी को लोग बोलते हैं कृष्ण से बड़ी थी, लेकिन राधा रानी सच मायने में 1 वर्ष 15 दिन कृष्ण से छोटी हैं। और ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है व्रज मंडल परिक्रमा पुस्तक, और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इस्कॉन वृंदावन में लिखी है पुस्तक। तो उसमें वर्णन आता है एक लीला का, उसमें कहते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म गोकुल में हुआ और राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ जी आज तो बोल दो, रावल में हुआ। तो रावल में जब राधा रानी का जन्म हुआ तो उससे पहले कृष्ण का जन्म गोकुल में हो चुका था। और कृष्ण भगवान के जो पिता थे नंद बाबा और यशोदा मैया, उन लोगों को मालूम पड़ा कि वृषभानु और कीर्तिदा के घर कोई पुत्री नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो बड़े वो भी फ्रेंडली नेचर में दुखी थे, होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में, हम भी चाहते हैं इनके घर भी हो, सब कुछ खुशमंगल हो। तो जब पता चला कि उनको दिव्य पुत्री की प्राप्ति हुई है जिसकी रोशनी सैकड़ों सूर्यों को इकट्ठा कर लो, इतना तेज उसके शरीर से निकल रहा है, तो सारा व्रजमंडल उसके दर्शन करने के लिए आने लगा। तो ये भी आए और पता चला कि खुशी तो बहुत है लेकिन एक छोटा सा दुख भी साथ में है। क्या दुख है? वृषभानु महाराज ने कहा पुत्री तो प्राप्त हुई हरि नाम की कृपा से, कात्यायनी की कृपा से, परंतु नेत्रहीन है, आंखें नहीं है। तो उन्होंने कहा नेत्रहीन है, ऐसा तो नहीं हो सकता, दिखाओ। तो देखा तो पकड़ के आंखें खोलने का प्रयास किया तो खुलती नहीं थी आंखें, चिपकी हुई आंखें। तो उन्होंने कहा कैसे, 11 दिन बीत चुके हैं और 11 दिन के अंदर अभी तक नेत्र खोल नहीं रही हैं, और कृष्ण भगवान को लेकर के नंद बाबा खड़े हैं और बातचीत चल रही है। कृष्ण भगवान जैसे होते हैं ना, बच्चे एक साल के हैं तो उछल कूद करने लग जाते हैं, घुटनों के बल चलने लगे, तो भगवान नंद बाबा ने नीचे रख दिया और विश्वानु महाराज के रावल महल के अंदर घुटने घुटने कृष्ण चलने लग गए। और पलने में अभी पैदा हुई 11 दिन की श्रीमती राधा रानी आंख बंद के लेटी हैं और कृष्ण जाते हैं सीधे पल्ले के पास, पल्ला पकड़ते हैं, ऊपर उठते हैं और क्योंकि चलना नहीं आता है घुटने के बल चल रहे हैं और फिर ऐसे झांक कर देखते हैं और हाथ का स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श होता है राधा रानी कहती आ गए मेरे प्राणनाथ, है ना, और आंखों को टंग खोल देती है। यहां पर फोटो भी लगाया गया आज, ओ श्रीमती राधा रानी को कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं और राधा रानी ने नेत्र खोल दिए हैं। तो ये है नेत्र जो खोलने के, है ना, नेत्र उत्सव होता है भगवान का, तो सही मायने में राधा रानी का नेत्र उत्सव 11 दिन बाद अष्टमी के दिन मनाया गया। बहुत ही स्पेशल, राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं और इसके पीछे वर्णन यही करते हैं शास्त्र कि राधा रानी ने पहले ही कहा था कृष्ण जाऊंगी तो आपके सहारे, खोलूंगी आंख तो आपको देख करके। तो इस प्रकार से राधा रानी हमको शिक्षा दे रही हैं कि सुबह उठो तो कुत्ता लेके पार्क में घूमने मत जाओ, सुबह उठो तो बच्चों का टिफिन बनाने के लिए मत जाओ, सबसे पहले उठो तो किसका आंख बंद करके किसका दर्शन करो, स्नान करके करो, ये नहीं ऐसे चले गए, स्नान करके जाओ आंख बंद करके, आंख खोलो तो या अपने रूम के अंदर एक फोटो लगा लो कृष्ण का कि पहली आंख खोलूंगा तो फिर किसका दर्शन करूंगा, भगवान का, और क्या बोलूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो लीलाओं को और ज्यादा जूसी बनाने के लिए, रसीला रसिक बनाने के लिए योग माया को सेवा दी है कृष्ण ने। और श्रीमती राधा रानी जो हैं इनकी बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, फिर बरसाना की, बरसाना का मतलब है जहां राधा रानी का कृपा बरसती है, है ना, राधा रानी की कृपा बरसती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसती है, तो उसी प्रकार से राधा रानी बड़ी कृपालु हैं। तो श्रीमती राधा रानी की कुछ पौगंड लीलाएं हैं, कुछ उनकी युवावस्था की लीलाएं हैं, कुसुम सरोवर आदि की लीलाएं हैं, तो सभी लीलाओं का वर्णन करेंगे तो फिर रुक्मणी कृष्ण प्रभु के लेक्चर का टाइम आ जाएगा। तो आप तो प्रभु जी वो है ना कृपालु हैं, लेकिन और सारे फिर तो जैसा प्रभु जी का आदेश है तो कुछ लीलाओं का वर्णन तो कर सकते हैं हम। तो जो योग माया है ये क्या करती है, राधा रानी का विवाह करा देती है। किसके साथ में? कृष्ण के एक अवतरित विष्णु रूप है जिनका नाम है अभिमन्यु। ये अभिमन्यु महाभारत वाले नहीं है, ये अभिमन्यु जो है अलग है, ब्रजमंडल के अभिमन्यु। अभिमन्यु से विवाह करा देती हैं और उनके, राधा रानी की दो सास और उनकी एक ननद, जटिला और कुटिला। जटिला बड़ी जटिल थी, कुटिला बड़ी कुटिल थी, है ना। और ये भगवान की इच्छा से जटिला और कुटिला को भगवान ने भेजा। भगवान को राक्षसों का वध कर सकते हैं, 3 दिन के छक्टासुर को उड़ा दिया, छकट उड़ा दिया, है ना, पूतना को वध कर दिया, तृणाव्रत को मार दिया, इससे भगवान अगासुर को फाड़ देते हैं, बकासुर को मार देते हैं। वो जटिला कुटिला से डरने वाले हैं, लेकिन नहीं, मर्यादाओं का अवलोकन करने के लिए और लीलाओं का रस स्वादन कराने के लिए उन्होंने जटिला को जटिलता और कुटिला को कुटिलता प्रदान करी, है ना। और ऐसी बहुत सुंदर लीलाएं वर्णन की, इसको कहते हैं, इस शब्द को वर्णन किया गया है कि इस प्रकार की लीलाओं को कहते हैं रसेर उल्लास, रस का उल्लास। एक होता है रस जूस कहते हैं, उसमें कहते हैं थोड़ा सा सिप पी के, एक आम को थोड़ा काला नमक थोड़ा और डाल दो, तो थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा सा और, थोड़ा नींबू थोड़ा और दबा, तो आखिरी सिप तक व्यक्ति प्रयास करता है रस का क्या हो, रस स्वादन हो, रसेर उल्लास। इस लीलाओं में, जब लीलाओं में बहुत कठिनता आ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो कठिनता हम अचिंत्य हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो कृष्ण की इच्छा से होती हैं, रस को बढ़ाने के लिए, रसेर उल्लास करने के लिए। तो ऐसे गोलोक धाम से राधा रानी और कृष्ण अवतरित होते हैं, तो इनकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं जो कि कवि कर्णपुर के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है आनंद वृंदावन चंपू। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो भक्तों के मुख से सुना है, मैं योग्यता नहीं, अभी तो भागवत ही नहीं समझ पाए, गीता ही नहीं समझ आई, तो क्या हम पढ़ेंगे, ये तो हमारे वरिष्ठ भक्त लोग पढ़ते हैं, तो इन लोगों के मुख से सुन करके थोड़ा बहुत जो भी लिखा है वो मैं नोट्स से बोल दूंगा। तो कहते हैं कवि कर्णपुर जो थे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद क्या है भगवान का, अभी बताया था, हृदय। और वो खीर के जैसा है कि पूरी डिश के अंदर सबसे ज्यादा से कचौड़ी भी है, राधा रानी की अरबी भी है, राधा रानी को अरबी बड़ी पसंद है, प्रिय है, तो सारी चीजें हैं और सलाद भी है, अचार भी है, पापड़ भी है, सब कुछ है, साइड में एक स्वीट डिश खीर रखी हो तो आदमी जल्दी जल्दी खाना फिनिश करता है, फिर स्वीट डिश को इत्मीनान से चम्मच पे चम्मच खाता है। श्रीमद भागवत के 12 स्कंदों में से खीर रूपी जो है वो क्या है, 10वां स्कंद, और वो वेट करता है व्यक्ति 10वां स्कंद कब आएगा। तो ज्यादातर लोग 10वें स्कंद पे डायरेक्ट कूद जाते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा नो, पहले स्कंद के पहले श्लोक से क्रम अनुसार पढ़ो और 9वें स्कंद तक जाओ, जब कृष्ण को समझ जाओगे तब फिर 10वें स्कंद में प्रवेश करो। तो इस प्रकार से कवि कर्णपुर ने क्या किया, उस स्वीट राइस खीर को उठाया, बोले स्वीट राइस तो है लेकिन इसके अंदर ना काजू बादाम नहीं है। तो कवि कर्णपुर ने काजू बादाम पिस्ता केसर थोड़ा सा फ्लेवर उसके ऊपर डाला और फिर कहा कि अब मैं भक्तों को खिलाऊंगा। अब सोचो कर्पूर डाला हो, पिस्ता बादाम हो तो खीर कैसी लगेगी, अधिक आनंद प्रदान करती, ऐसी खीर उन्होंने दी। तो श्रील प्रभुपाद जी की एक भक्त थे माता जी, उन्होंने जब इस प्रकार की भगवान की भोजन लीलाओं को सुना तो उनको लगा कि भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो भगवान का जब भोग लगाती थी तो वो होते ना घर में किचन सेट वाली कटोरियां छोटी वाली, उन कटोरियों में वो भगवान को भोग लगाते थे, ऐसे रखा और भगवान को बोले भगवान ले लो। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन देखा महाप्रसाद किधर है, तो उन्होंने लाके दी छोटी सी प्लेट, इतनी छोटी, उसमें छोटी छोटी कटोरियों में एक एक दो, उन्होंने कहा ये क्या है। तो वो बोले कि प्रभुपाद एक्चुअली ना कृष्ण गोपाल रूप में मैं उनका भजन करती हूँ, वात्सल्य भाव में मेरा उनसे प्रेम है। तो है ना प्रभुपाद बोले वात्सल्य भाव वगैरह नहीं है, कृष्ण हमेशा केशोर अवस्था में 16 वर्ष के रहते हैं, वो अपनी लीलाएं करने के लिए भौम वृंदावन में आते हैं, छोटे बनते हैं, वरना भगवान छोटे बड़े, बड़े छोटे नहीं होते, भगवान यथा रूप में एज इट इज क्या रहते हैं, कौवन अवस्था, यौवन अवस्था, कुंवर अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, युवा रखते हैं एकदम। वो जब 125 वर्ष के थे तब भी उनके प्रपौत्र पौत्र पुत्र सब बूढ़े लगते थे लेकिन भगवान कृष्ण वैसे के वैसे विराजमान थे, इसीलिए वृंदावन के लोग कुरुक्षेत्र में कृष्ण को पहचान पाए कि अरे तो हमारे कृष्ण, पर रूप अलग था क्योंकि क्षत्रिय वेश में दिख रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा भगवान को हमेशा किशोर अवस्था में जितना प्रसाद पाया जाता है उतना भोग लगाना चाहिए, मतलब भर भर के रोटी, भर भर के, आदमी कहते हैं ना अरे अभी तो आप यंग हो, बढ़ती उम्र है, खा लो खूब सारा खाओ। तो वही कृष्ण को भी छोटा छोटा नहीं लड्डू गोपाल समझ के खिला दिया, कृष्ण इज नॉट लड्डू गोपाल, कृष्ण इज कृष्ण विद श्रीमती राधा रानी। जो व्यक्ति लड्डू गोपाल की पूजा करता है उसके लिए आज हमने एक भजन गाया था, कुछ लोग लेट से आए, कृष्ण भजन कहते राधा भजन यदि मति नहीं भेला, राधा रानी का अगर मति नहीं है कृष्ण भजन आकारण गेला, कृष्ण का भजन बेकार हो जाएगा। तो लड्डू गोपाल को पूजा और राधा रानी को नहीं पूजा तो कृष्ण भजन का कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए लड्डू गोपाल सेवा हमारे गौड़ीय संप्रदाय की सेवा नहीं है, हमारे यहाँ सेवा है राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, शक्तिमान शक्ति, शक्ति शक्तिमान, दोनों के साथ में होती है ना। तो ये बड़ी विशेष अंडरस्टैंडिंग हमें करनी चाहिए कि पूरा भोग भगवान को दें। तो क्या देखा गया कि जब इतना हो गया तो माताजी में भाव आ गया कि है ना युवा बच्चे को तो खिलाते हैं ना गरम गरम फुलके, आलू के पराठे, घी लगा के मम्मी खिलाती, माता खिलाती। तो देखा गया कि ऑल्टर खुला हुआ है और डीटी किचन भी खुला है और प्रभुपाद जी के भक्त अंदर जाते हैं, गरम गरम फुलका ला करके प्लेट में डालते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये क्या चल रहा है, भोग ऑफरिंग नहीं हुआ, बोले प्रभुपाद चल रहा है, भगवान खा रहे हैं हम खिला रहे हैं लाला। तो प्रभुपाद बोले नो नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रिजेक्ट किया गया, क्यों ये खाना ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा भगवान के लिए पर्टिकुलर इतना खाएंगे उतना बनाकर रख करके वापिस आ जाओ, क्योंकि कृष्ण एकांत में प्रसाद खाते हैं, कृष्ण को शर्म आती है सबके सामने, इसलिए पर्दा डाल करके भगवान का भोग लगाया जाता है, भगवान सबके सामने नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान ने अगर खा लिया तो न्यूज़पेपर वाले जाएंगे आज देखा गया कृष्ण का मुंह चल रहा था, मतलब इससे पहले तो भूखे रहते थे आज पहली बार खा रहे हैं ना, आज देखा कृष्ण की आंखों से आंसू टपक रहे थे, आइए हम आपको साक्षात दर्शन कराते हैं, हमारे बीच में है मंदिर के अध्यक्ष अमोघ लीला दास, वो बताएंगे, प्रभु जी कहेंगे हाँ आज पहली बार खाया ऐसे। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये सब मेरा ना ये नहीं चाहिए मुझको, आई डोंट वॉन्ट माई ग्लोरिफिकेशन, ऐसे ही भक्त को भगवान से सीखना चाहिए। भगवान भी अपना ग्लोरीज नहीं चाहते, भगवान अपने भक्तों की ग्लोरीज बढ़ाते हैं। राधा रानी की ग्लोरीज, अर्जुन की ग्लोरीज, शिव जी की ग्लोरीज, हला हल पियो तुम्हारी ग्लोरीज होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाए। तो एकांत में भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन लीलाओं को निकुंज एकांतिक लीलाएं कहते हैं। निकुंज के अंदर एकांतिक रूप से लीलाएं भगवान करते हैं। तो एक लीला में वर्णन आता है कि एक बार वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता ने सोचा कि क्यों ना यशोदा को अपने घर बुलाया जाए। तो वृषभानु महाराज बोले क्यों? कहा क्योंकि है ना यशोदा यश बढ़ाती हैं। अभी ये लोग शिफ्ट हो चुके थे बरसाना और नंदगांव में, और राधा रानी भी बड़ी हो चुकी थी 7-8 वर्ष की, और कृष्ण भी 9 वर्ष के थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा उनकी फैमिली को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और बहुत पुराने मित्र हैं। जब से गोकुल रावल से यहाँ शिफ्ट हुए हम कभी मिले ही नहीं, ठीक है बुला लो। तो इनविटेशन भेजने के लिए एक दूत को भेजा गया, कहा कि आप लोगों को वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता ने अपने घर प्रसाद पे बुलाया है। तो राधा यशोदा मैया ने कहा ठीक है। यशोदा का मतलब होता है यश उदय, जो यश का उदय करती हैं उनका नाम है यश उदा। तो यशोदा महारानी के आने से वृषभानु महाराज के महल और राधा रानी का भी यश बढ़ेगा, वर्धन होगा, इसलिए यशोदा महारानी और नंद बाबा को इनविटेशन आया, निमंत्रण पत्र, निमंत्रण आया। बड़े खुश हुए, जाने के लिए तैयारी हुई। तो कहा भाई हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? हाँ जी, भक्त के जीवन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? केंद्र बिंदु कृष्ण। कहा कृष्ण को तो बुलाए। कृष्ण को बुलाया, कहा कृष्ण तुम ना कल अपनी गाय चराने मत जाना, तुम्हारे लिए प्रसाद का इनविटेशन है। हम लोगों को राधा रानी के यहाँ जाना है, वृषभानु महाराज कीर्तिदा माता से मिलने, उनके घर हमारा भोजन है। कहा ठीक है, तो भोजन के लिए जाने की, अब ये जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कृष्ण बोले मैं अकेला तो जाता नहीं, जहां जाता हूं परिकरों के साथ जाता हूं, मेरे ग्वाल बाल भी जाएंगे, सब खाएंगे। तो यशोदा मैया बोली उन्होंने मोहल्ले को इनविटेशन नहीं दिया है, खाली 3 लोगों को बुलाया है, हम 4 हमारी फैमिली को बुलाया है, ये कोई वो नहीं मोहल्ला आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसी बात कर रही हैं, जहां मेरे परिकर नहीं वहां कृष्ण नहीं। तो यशोदा मैया बोली ठीक है जा फिर मत जा। हाँ बोलना, कृष्ण बोलने लगे एक मौका था राधा रानी से मिलने का, वो भी ओके करके टेंशन हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। तो ये बोले मैंने तो ये सोचा नहीं था कि कृष्ण यशोदा मैया ऐसे रिएक्ट करेंगी, पर अब कर दिया है तो ठीक। तो फिर इस प्रकार से उन्होंने नेक्स्ट डे यशोदा मैया और नंद बाबा तैयार हो रहे थे, साथ में दाऊ जी बलराम को सजाया जा रहा था। कृष्ण आया अपने ग्वाल वाले के ड्रेस में, मैया मुझे नहीं सजाओगी? मैया बोली पर काना तुमने तो कल मना किया था ना कि तुम जाओगे नहीं, तो तुम्हारे परिकर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने तुम्हारे लिए मटकी में भोजन बना दिया, जाओ और जाकर के तुम वहां पर अपने टेर कदम जाओ, टेर कदम में बैठकर टेर लगाओ अपनी गैयाओं को, बैठो जाओ वहां पर, चले जाओ। तो कृष्ण बोले हाँ मैया मैं चला तो जाता, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं जाने में, पर मेरे सारे के सारे परिकर ना आज बुखार में है, सबको वायरल फीवर हो गया है। वायरल फीवर हो गया है? यशोदा मैया बोली अच्छा तो तुम्हें उनके घर जाना चाहिए दुख व्यक्त करने के लिए, तुम्हारे साथी हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। कहा नहीं नहीं उनके फैमिली मैनेज कर लेगी, मुझे जरूरत नहीं जाने की। अच्छा फिर क्या करें? कहा कि मुझे ले चलो। तो मैया बोली ठीक है पहले स्नान करो फिर चलते हैं। स्नान कराया, तैयार करने लगी, उनको कुमकुम टीका आदि सब लगा रही थी। इतने में उनके प्रिय ब्राह्मण भक्त जो भोजन के अभिलाषी हैं उनको खनक लग गई कि अकेले अकेले चल दिए कृष्ण जी खाना खाने के लिए। तो उनके एक भक्त थे, उनका नाम क्या था? हाँ मधुमंगल। मधुमंगल जो थे वो ब्राह्मण भोजन प्रिया कहते हैं, ब्राह्मण भोजन का बड़ा प्रिय होता है ना, भोजन जहां मिल जाए वहां पर कथा छोड़ देता, कहता चलो हो गई कथा, चलो प्रसाद लाओ। तो ब्राह्मण भोजन प्रिया, तो ब्राह्मण ने कहा गाय वाय हो गई, कृष्ण का संग हो गया, भोजन मिलना चाहिए। तो कहा ठीक है मुझे नहीं ले चलेंगी मैया? तो कृष्ण यशोदा मैया कहती हैं ओहो मधुमंगल उन्होंने सिर्फ हम 4 लोगों को बुलाया था, कृष्ण भी नहीं जा रहे थे, अब तुम्हें चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। ओ मधुमंगल हो हरी वो खुश हो जाता है, मैं भी जाऊंगा प्रसाद खाऊंगा। वृषभानु महाराज क्या बैलगाड़ी में बैठकर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो बड़ा ही अजीब सा दृश्य होता है, पहुंच करके नंद बाबा वृषभानु महाराज बात करने लगते हैं, कृष्ण भगवान राधा रानी को ढूंढने लग जाते हैं। यशोदा मैया प्रसाद पे आए हैं तो क्या देखेंगे? प्रसाद यशोदा मैया बड़ी टेंशन में है, कहीं हलवाई लगा के तो नहीं बनाया, क्योंकि कृष्ण हलवाइयों का नहीं खाते हैं, कृष्ण उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं जो 16 माला जप करते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, शास्त्रों का अनुगमन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ का पकाया हुआ खाना कृष्ण खाते, लग तो देते हैं और फिर वो उठा भी लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसे मूर्ति समान खड़े रहते हैं। मान लो हम लोग वैष्णव हैं, हमारे आगे कोई नॉन वेज रख दे तो हम कहेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, उदास हो जाएगा, बस ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ खा लीजिए, नहीं नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण भी उन्हीं के हाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, जो 64 माला नहीं करता मैं उसके हाथ से खाना नहीं लेता, है ना। तो सोचिए हम पर तो कृपा हुई है श्रील प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद ने कहा 16 माला कर लो, 16 माला जो नहीं करता उसके हाथ से कृष्ण स्वीकार नहीं करते। तो यशोदा मैया बड़ी स्ट्रेस में थी, कहीं हलवाई वगैरह तो नहीं लगा, इतने बड़े राजा हैं, इतनी बड़ी फीस्ट हो रही है, पूरा बरसाना आ रहा है, हमको भी बुलाया है। तो यशोदा मैया कैसे पता करें पहली बार आए हैं, क्योंकि वहां रावल तो देखा था पर बरसाना तो कभी देखा नहीं। तो उन्होंने, जब आपको देखना हो प्रसाद कहाँ कुक हो रहा है तो कैसे पता करेंगे, हाँ किससे, स्मोक कहाँ दिख भी नहीं रहा ना कहीं अंदर, कहीं इतना बड़ा महल है आपने देखा बरसाना का, कैसे पता चलेगा कहाँ है, खुशबू से। तो कहते हैं प्रसाद की जो है ना वो खुशबू से पता चलता है, नासिका इंद्री पहले प्रज्वलित हो जाती है, बासमती राइस है ना, उसके बाद फिर बासमती राइस की नासिका इंद्री के बाद फिर चक्षु इंद्री जागृत होती है, कैसा बना है, खिले खिले चावल, खिला खिला पुलाव, और फिर चक्षु इंद्री के बाद जिह्वा इंद्री रसीली हो जाती है, उस पे पहले से सलाइवा आ जाता है, गुलाब जामुन चावल ऐसे हो जाता है, और फिर चौथी बार में फिर वो हमारी जो पेट की जो है ना उदर इंद्री, इसका पोषण होता है और फिर पूरे शरीर की शक्ति का संचार होता है। तो नासिका इंद्री के द्वारा यशोदा मैया गई और साइड में टाइम देख करके मधुमंगल ने कहा डोंट वेस्ट टाइम, है ना, यशोदा मैया का पल्लू पकड़ के, मैया मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है, वो भी पीछे पीछे, खा खाना तो देख ले, जिसके लिए आए हैं फालतू बातें होती रहेंगी, मैं अपना देखूं, जिस फोकस रहना चाहिए आदमी को, फोकस्ड। तो कहा प्रसाद ग्रहण करने आए, तो आ गए, देखा यशोदा मैया ने देखा कि वहां पर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, मतलब इतने व्यंजन ऊपर नीचे हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, मतलब जो गोवर्धन को 56 भोग पूरे व्रज में लगाया वो मतलब फीका पड़ गया उसके सामने, इतना कवि कर्णपुर कहते हैं इतना वहां पर प्रसाद लगाया गया था, और एक आइटम भी रिपीट नहीं हुआ था, एक भी आइटम रिपीट नहीं, ये नहीं कि छोटा समोसा बड़ा समोसा टेढ़ा समोसा भरा समोसा, ऐसा नहीं था, समोसा मतलब एक समोसा और दूसरा आइटम दूसरा। तो सोचिए कितने प्रकार का हम प्रसाद बना सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा नॉन वेज की जरूरत नहीं है, वेजिटेरियन के अंदर कृष्णहारी प्रसाद में हजारों सैकड़ों प्रकार की डिशेज बन सकती है। तो इस प्रकार से बनाया था, यशोदा मैया ने कीर्तिदा से कहा क्या जरूरत थी इतना सब करने की, है ना, मधुमंगल कहता है आपको क्या प्रॉब्लम है, पेट में चूहे कूदरे, इतना स्वादिष्ट भोजन है, आप कह रही हो कहे को, ठीक है हो गया हो गया, हाँ मैया क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, ठीक है मैया बनाया तो ठीक है। तो है ना यशोदा मैया को कीर्तिदा कहती है, देखिए मैंने नहीं बनाया इसको, तो श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि क्या सारे आइटम श्रीमती राधा रानी ने बनाए, कहा तो बोले कि इतने सारे, तो कीर्तिदा कहती है कि ये तो खाली स्नैक्स है, प्रसाद तो अंदर बाहर हलवाई कुक कर रहे हैं, हमारे जो महाजन जो भक्त हैं वृषभानु महाराज के सेवक वो बना रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी खीर, ये हजारों सैकड़ों आइटम जो आपको हमारे दिख रहे हैं ये स्पेशल रसोई है, श्रीमती राधा रानी ने अष्ट सखियों के साथ मिलकर कृष्ण के लिए तैयार किया है। अच्छा इतना सारा राधा रानी तुमने बना लिया, अब मन में बस एक ही बात आती है ना माताओं के, क्या आती है, ऐसी लड़की मिल जाए तो क्या मन में आता है, हा? बहु होनी चाहिए ऐसी, तो आंखों से बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पाई, कहा बिटिया तुमने राधा इतना क्यों किया, तो चलो बहुत तुमने तो बहुत सेवा कर दी, कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। तो सब लोग बाहर आए, बाहर आकर के बैठने की व्यवस्था करी गई कि कैसे बैठा जाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नंद बाबा को बिठाया जाए, नंद बाबा के बाद बलराम को बिठाया जाए, बलराम के बाद कृष्ण को बिठाया जाए, और कृष्ण के बाद मधुमंगल बोले मुझको बिठाने की जरूरत नहीं है मैं अपने आप बैठ जाऊंगा, है ना, मधुमंगल बैठ गए। और कृष्ण के साथ में उनका एक परिकर और आया था, उनका प्रिय तोता, तोता है, देखा आपने कभी कभी राधा रानी के हाथ पे होता है और कभी कभी कृष्ण। तो कृष्ण का जो तोता है सुर और एक है सारी, वो राधा रानी के हाथ में होता है और कृष्ण के हाथ में सुर, उसका नाम है विचक्षण। विचक्षण जो है वो कृष्ण का तोता है, सुख है ना? तोता सुर सुख, सुख और सारी। तो इस प्रकार से वो सुख जो है विचक्षण, वो बैठा था कृष्ण भगवान के लेफ्ट कंधे के ऊपर, यहां बैठा था। तो अभी प्रसाद वितरण शुरू हुआ, लेकिन यशोदा मैया वैष्णव एटिकेट को पालन करती हैं, जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को जब प्रसाद होता है, हमने देखा था अभी प्रभुपाद आविर्भाव तिथि पे प्रसाद वितरण करने के लिए बोलना पड़ता है, आप कर दीजिए आप कर दीजिए, आदमी कहता है मुझे यहाँ जाना है, मुझे बैठ जाते हैं सब लोग पाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति सेवा का भाव नहीं रहता है। तो आप देखेंगे हमारे इवन गुरुदेव विजोनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के कई मैंने पिक्चर्स देखे हैं, जहां पर गुरु महाराज जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं और अगर उनके पास समय है तो महाराज अपने हाथ से बाल्टी और करछी लेकर के प्रसाद वितरण करते हैं, वितरण करने की कृपा। इवन हमारे अध्यक्ष अमोघ लीला प्रभु को आप देखेंगे, हमेशा प्रभु जी वितरण करने में ज्यादा क्या कहते हैं मतलब उत्साही रहते हैं प्रसाद पाने से। बाद में देखेंगे एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा प्रसाद प्रभु जी भी लेते हैं और महाराज खाली मुरमुरे खा लेते हैं एक चम्मच और इतना सारा फीस्ट। तो ये सेवा की भावना इस लीला से हमको सीखनी चाहिए। यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं मैं प्रसाद नहीं लूंगी, आप लोगों ने कुकिंग किया ये कम है क्या, मैं वितरण करूंगी। यशोदा मैया वितरण करने लगी तो इधर दे दिया था नंद भावा को, बलराम को भी दे दिया सारा प्रसाद। अभी कृष्ण और जो मधुमंगल रह गए थे, मधुमंगल कह रहा था बाबा मुझे उधर बिठा लो ना अपनी साइड पे, टाइम लग रहा है इधर तक आने के लिए, है ना? तो मधुमंगल को बहुत देर लग रही थी, मधुमंगल चुपचाप बैठे थे और मधुमंगल ने कहा कि यशोदा मैया एक और लगा लो ना अपने साथ में, टाइम लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यशोदा मैया बोली राधा रानी को इशारे से इधर आओ। तो राधा रानी बोली जी मैया। कहा कि देखो कृष्ण को और मधुमंगल को, कृष्ण को तुम दे दो, मधुमंगल बोला हाँ भाभी मुझे भी आप दे दो, तो पहले ही बोल दिया। तो है ना जैसी भाभी बोला तो कृष्ण देखते कैसी बातें करता है ना, राधा रानी भी देख करके ना थोड़ा शर्मा आ गई कि ना देखो कैसी बातें कर रहा, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं ऐसी बातें कर रहा। तो ये सारी लीलाओं को हम इमिटेट नहीं कर सकते, हमें इनके रस स्वादन करके सिर्फ शरणागति सीखना और कुछ नहीं सीखना। तो इस प्रकार से दोनों की, कृष्ण और राधा रानी की आंख से आंख ऐसे हो रही है और राधा रानी सब। तो यशोदा मैया को देखिए कितनी समझदार डिस्ट्रीब्यूटर है, यशोदा मैया ने आंखों ही आंखों में राधा रानी को बता दिया राधे वही देना जो तुमने अपने हाथ से बनाया हो, क्योंकि कृष्ण सिर्फ वही स्वीकार करते हैं जिसको राधा रानी अलाउ करती है। इसीलिए डीटी किचन का नाम रखा जाता है मंदिरों में, हमारे यहां तो नहीं लिखा लेकिन लिख सकते हैं राधा रसोई, राधा सेवा या राधा। राधा रानी वहां खड़े होकर खुद देखती है, मॉनिटरिंग करती है। भक्त बोलते हैं अरे नहाना पड़ता है फिर बनाना पड़ता है फिर अगर बाहर जाओ तो फिर नहाना, अरे राधा रानी खड़ी है ब्रह्मांड नायिका, वो अपराध हो जाएगा तो बाहर निकाल देगी भक्ति से ही, वहां एकदम ध्यान पूर्वक। लोगों को लगता है डीटी किचन में मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, ये कोई नॉर्मल कुकिंग नहीं है, ये कृष्ण का प्रसाद को खो रहा है। वो भावना वो प्रेम वो राधा रानी के पास है और किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो उत्तम नायिका है, वृंदावनेश्वरी ब्रह्मांड नायिका। वो खड़ी होगी यशोदा मैया ने कहा वो हलवाई वाला देख लेना वो ना जाए कृष्ण के पास, वो नहीं लेते कृष्ण, बता दी आंखों में, वरना बुरा लग जाता कीर्ति दागो कि हमारे प्रसाद के लिए बोल रहे हैं हलवाई का इसको उसका, ऐसे क्या कृष्ण के अंदर वो हो गया। लोग आते हैं ना तो उस तरह से बहस करते हैं तर्क करते हैं। तो फिर राधा रानी दे रही थी, तो जब दे रही थी तो है ना अब कृष्ण और राधा रानी की आंखें जब एक दूसरे को देखने लगी तो एक मिनट के लिए क्या हुआ, समाधिग्रस्त हो गए। राधा रानी कृष्ण को देखी, कृष्ण राधा रानी को देखे। अब मधुमंगल कह रहा अबे देखते ही रहोगे प्रसाद भी खाने दोगे, है ना? तो मधुमंगल तो कह रहा था अपनी लीलाएं करते रहना निकुंज की, मैं तो यहां आया हूं प्रसाद पाने के लिए। लेकिन राधा और कृष्ण एकांत भाव में प्रसाद लेते हैं, इसलिए कृष्ण कह रहे थे कि मैं एकांत में नहीं हूं, मैं तो सबके बीच में कैसे प्रसाद ग्रहण करूं, है ना? तो विचक्षण जो था ना उसने कीर्तन शुरू कर दिया ताकि लोगों का मन डाइवर्ट हो जाए, और मन डाइवर्ट करने के लिए कीर्तन शुरू किया विचक्षण ने, और इधर जो कृष्ण थे उन्होंने प्रसाद पाना शुरू कर दिया। और जो विचक्षण था वो क्या कीर्तन कर रहा था, तो एक मिनट हम कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 करे कालिंदी कुल किलोल, करे कालिंदी कुल किलोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 करे कालिंदी कुल किलोल, करे कालिंदी कुल किलोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, राधे राधे जय श्री राधे राधे राधे, राधे राधे जय श्री राधे राधे राधे, राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा हरे कृष्णा। तो इतने में कृष्ण प्रसाद हो गया कृष्ण, आपका भी ध्यान नहीं गया ना, ऐसे किसी का ध्यान नहीं गया, सब कीर्तन में मग्न, विचक्षण नाच रहा था, फुर उड़ रहा था, कीर्तन कर रहा था, और इधर भी सब लोग ध्यान से मग्न थे, और इधर राधा रानी ने कृष्ण एकांतिक प्रसाद ग्रहण कर लिया। होता है ना कभी कभी जब फेस्टिवल होता है तो नीचे एक छोटा पर्दा डाल देते हैं और फिर प्रसाद हो जाता है, तो देखते देखते भी प्रसाद हो सकता है। तो राधा रानी ने विचक्षण ने कीर्तन का पर्दा डाला और इधर प्रसाद ग्रहण कर लिया कृष्ण ने, और कृष्ण ने प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा सा इतनी सुंदर सेवा के लिए अपने मुख से निकाल के महाप्रसाद सीधा किसको दिया, विचक्षण के मुख में, चोंच में दबा लिया। मधुमंगल कह रहा है सबको मिल रहा है, मैं ही भूखा बैठा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर मधुमंगल को प्रसाद मिला, मधुमंगल ने खूब सारा प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद जब वो चलने लगे तो कीर्तिदा से कहती हैं, यशोदा मैया एक चीज मांगना चाहती हूं कि है ना, आपके घर हम आए, आप जो है ना हमें एक गिफ्ट दे दीजिए। क्या गिफ्ट? कि मेरा कृष्ण जो है ना वो अब इसने सुंदर स्वाद को चखने के बाद अब हमारे हाथ का खाएगा नहीं, आप कृपया करके ना आप आइए हमारे घर पे रोज कुकिंग करने के लिए। तो कीर्तिदा कहती है देखिए अभी बेटी बड़ी हो रही है, गांव वाले फिर क्या सोचेंगे, और फिर लड़की कैसे आपके घर, आपका भी युवा लड़का है कैसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, आप ना पावन सरोवर नाम का एक स्थान है जो कि नंदगांव से उतरते ही लेफ्ट हैंड साइड पे पावन सरोवर है, जहां पर 33 करोड़ तीर्थ स्नान करने के लिए आते हैं चंदन यात्रा जब प्रारंभ होती है अक्षय तृतीया के दिन। तो ऐसा पावन सरोवर तीर्थों को पावन करने वाला, वहां पर एक रसोई होती थी पहले, अभी नहीं है, उस रसोई में कहा राधा रानी कुकिंग करेंगी, पावन सरोवर से जल लिया जाएगा, वहां कुकिंग हो जाएगी और हम नीचे से ऊपर मंगवा लेंगे ताकि सबको ये लगे पावन सरोवर जाती है और वापस आती है। तो इस तरह से हम सेवा भी होती रहेगी और सब चीजें। तो आप देखिए कि इसके अंदर कितनी सुंदर शिक्षा है कि एक बार कृष्ण के लिए भोजन पकाया, एक बार, और क्या मिली, परमानेंट सेवा मिल गई, है ना। लाइफ टाइम जब तक कृष्ण वृंदावन में रहेंगे तो सेवा कौन करेगा, राधा रानी। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण की सेवाओं में भाग लेना चाहिए, जैसे प्रभु जी कहते हैं उनसे भाग लेना नहीं चाहिए। हम भाग जाते हैं, हाँ नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम बिजी, ऑफिस जाना, ये करना। आज प्रभु जी ने सुबह बोला सबको छुट्टी कर लेनी चाहिए, है ना। ये वैष्णव वाणी है, इसको ऐसे ही मत समझिए कि बोल दिया। अगर हम भक्तों की बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो फिर हम भक्ति में बहुत दूर है, है ना। अम्बरीश महाराज के कथन में आप सुनते हैं, बहुत अलग लीला है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा वरना समय जाएगा, कि भक्तों के अपराध के कारण जो है ना भगवान भी कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हो, है ना, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। दुर्वासा ऋषि को कहते हैं आप हो गए योग्य, आप हो गए ब्राह्मण, पर आपको अपराध करने के कारण आपको उन्हीं के पास क्षमा मांगने जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भक्त कहते हैं कि वो सेवा जब दी जाए तो सेवा से भागना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार सेवा करी और दोबारा सेवा मिल जाए आपको, ये चेकिंग पॉइंट है, जैसे जन्माष्टमी में आपने सेवा करी, राधाष्टमी में सेवा करी और अगले साल फिर आपको सेवा मिल जाए तो समझना चाहिए कृष्ण को स्वीकार है आपकी सेवा, इसलिए दोबारा सेवा मिल रही है, सेम सेवा मिल रही है। तो इसी चीज से मैं आज सुबह जब सोच रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, अमोघला प्रभु जी की कृपा से 3 महीने पहले रुक्मणी द्वादशी मनाई गई थी यहाँ पर, है ना, इस मंदिर में, द्वारका में। और प्रभु जी सुबह कह रहे थे हमारे यहाँ रुक्मणी भी हैं और राधा है, तो रुक्मणी मैया का ग्लोरिफिकेशन चर्चा करने की सेवा भी मुझे मिली थी। तो उसमें रुक्मणी मैया ने कृष्ण को सेवा दी, पसंद आई, तो फिर राधा रानी की सेवा भी मेरे को मिली 3 महीने बाद। जबकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कौन आएंगे ये आएंगे, और मतलब मेरे को, मतलब मुझे लगा कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, लेकिन फिर बाद में कृष्ण ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया और प्रभु जी की कृपा से अब मिली गई बाद में सेवा। तो ये भगवान का प्रचार करना भी बहुत बड़ी सेवा है अगर इसको सेवा की भावना से किया जाए। हमारी तो कोई योग्यता है नहीं, जैसे तो हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे प्रभुपाद, उनकी वाणी को ही हम लोग रिपीट करते हैं, हम ना ये ग्रंथ पढ़ते हैं, वो लोग जो बोलते हैं सुनते हैं लिखते हैं और फिर रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से जो राधा रानी है उनके अचिंत्य गुण हैं, परंतु फिर भी कहा गया उनके 25 गुण सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। उनमें कहते हैं अनंत गुण श्री राधिकारा 25 प्रधान से गुणे रवश है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं, अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, बहुत हैं लेकिन 25 प्रधान हैं। उन 25 गुणों के अंदर कहते हैं जैसे राधा रानी जितनी फेमस हैं, लंदन में जब श्रील प्रभुपाद जी ने श्री श्री राधा लंडनेश्वर को वहां पर राधा रानी को स्थापित किया, तो भक्त कहते थे वहां पर कि पेरिस की जो वहां पर लंदन ही सॉरी पेरिस की पेरिस में जब पेरिसेश्वर को स्थापित किया तो पेरिस के लोग बोलते थे कि पेरिस की जो स्त्रियां हैं सबसे सुंदर हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा राधा पेरिसेश्वर स्थापित हो जाने के बाद कि पेरिस की ही नहीं इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है कौन, श्रीमती राधा रानी। ये उन्होंने कहा राधा पेरिसेश्वर में, जबकि पेरिस की स्त्रियां बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन उन्होंने कहा इससे भी सुंदर है कौन, श्रीमती राधा। तो इसलिए राधा रानी का जो सौंदर्य है इसी के कारण वो बहुत फेमस है, है ना, उनको सब जानते हैं उनके बारे में। कृष्ण का एक कुंड है कृष्ण कुंड और राधा रानी का एक कुंड है राधा कुंड, दोनों एक समय पर अवतरण हुए, परंतु दिल्ली से जब लोग जाएंगे तो उनसे पूछो कहां जा रहे हो, कभी कोई नहीं कहेगा श्याम कुंड जा रहे हैं, व्यक्ति क्या कहता है राधा कुंड जा रहे हैं। दोनों सेम टाइम पे बने, ब्रह्मांड नया कृष्ण है, भगवान कृष्ण को मानते हैं, परंतु आप देखें फेमस कौन होती है, अगर कृष्ण के साथ हैं तो राधा रानी फेमस होती हैं, और इतनी फेमस है कृष्ण को नाम बदलने पड़ते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन, राधिका रमण, पर राधा रानी का नाम चेंज नहीं होता, उनका नाम इतना पावरफुल है उनको चेंज के ओवर की जरूरत ही नहीं है, एक ही नाम में आनंद का भंडार प्रदान किया जा रहे हैं। इसलिए उनके इस गुण को कहते हैं जगत श्रेणी यश, इस जगत को अपने शरणागत करने वाले यश के कारण जगत श्रेणी यश, ये राधा रानी का एक स्पेशल उनका ये क्या गुण है। और राधा रानी का गुण है कि हमेशा मुस्कुराती हैं, कृष्ण कभी कभी जो है ना उदास होते हैं, वैसे तो भगवान भी कभी उदास नहीं होते, परंतु जब राधा रानी नाराज होती हैं तो कृष्ण उदास हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी मान भी जब करती हैं तो अंदर से प्रफुल्लित होती हैं, मुस्कुराती हैं, इसलिए उनकी मुस्कान को कहा जाता है उज्ज्वल स्मिता, उज्ज्वल रूप में स्मित, हमेशा उज्ज्वल स्मिता, उज्ज्वल रूप से प्रसन्न चित मुद्रा में रहती हैं। और इसी के कारण वो क्या करती हैं, गोकुल के भगवान को भी क्या कर लेती हैं, अपने वश में कर लेती हैं। और वश में करने के गुण को कहा जाता है आश्रव केशव, केशव को आश्रय प्रदान करने वाली, दुनिया को आश्रय देते हैं कृष्ण, और कृष्ण को आश्रय केशव प्रदान करती हैं कौन, श्रीमती राधा रानी। इसलिए गौतमीय तंत्र में कहा गया है, गौतमीय तंत्र नाम का एक ग्रंथ है जो गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया, गौतमीय तंत्र में कहा गया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी लक्ष्मी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। ये जो सम्मोहिनी है जो कि कृष्ण मदन मोहन का भी सम्मोहन कर लेती है, जिसके कारण मदन मोहन मोहिनी कहलाती है, ये पर देवता जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, देवताओं के ऊपर जो है राधिका, सर्व लक्ष्मी जितनी लक्ष्मियां हैं, सर्व कांति जितनी सुंदरता है, सम्मोहन करने वाली सम्मोहिनी उनकी क्या है, परा, उनके ऊपर है श्रीमती राधा। तो राधा रानी की जो उत्कृष्ट स्थिति है, इसको लीलाओं के द्वारा आप नीचे मत कर दीजिएगा। एक लीला और समाप्त करूंगा सुनाते वक्त, तो कहीं ऐसा मत करिएगा कि लीलाओं को आप चुटकुले के तरह समझें, इन लीलाओं की गहरी गहरे इसके अंदर जो शिक्षा है। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि किसी भी शास्त्र को पढ़ो, उसको रीडिंग मत करो, उसकी स्टडिंग करो। स्टडिंग मतलब जैसे 10वीं 12वीं का शिष्य ध्यान पूर्वक नोट्स बनाता है, पढ़ता है, लिखता है और प्रयास करता है मेरे नंबर उत्तम आए, ऐसे स्टडिंग करो। तो महाराज कहते हैं हमेशा अपने प्रवचन में, इसमें बड़ी गहरी बात है, महाराज हमेशा बोलते हैं। तो ये गहरी बात जो है वो पकड़नी है, कहीं ऐसा ना हो हंसी मजाक में आप ऊपर ऊपर से लिख करके चले जाएं, क्योंकि जनरली तो हम इतने तत्व की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आज मौका मिला है तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, वरना ज्यादातर सरल हम लोग प्रयास करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। तो एक लीला और आती है जिसमें भगवान जो श्रीमती राधा रानी हैं, इनके जो एक चाचा थे चंद्रभानु महाराज, वृषभानु महाराज के भाई थे चंद्रभानु, उनका एक बेटा था सुबल। तो ये जो सुबल था, ये और कृष्ण भगवान एक दिन वृंदावन के अंदर, एक स्थान है कोकिलावन, सुना है आपने किसने कोकिलावन, कितने लोगों ने सुना है, अब मैं बताऊं आपने क्यों सुना है, शनि महाराज के कारण, कृष्ण के कारण नहीं सुना होगा लोग, क्योंकि वहां पर जाते हैं शनि पर तेल चढ़ाने के लिए। शनि वहां पर इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने शनि को वहां रोक दिया था, कहा व्रज मंडल के किनारे रहो, नंद गांव में शनि नहीं आ सकते, तुम बाहर रहो, बरसाना में शनि नहीं आ सकते, शनि बाहर रहो, ना व्रजवासी को शनि नहीं लग सकते, तुम बाहर रहो। तो उन्होंने कहा प्रभु आपका दर्शन करना चाहता हूं, भगवान ने कहा मैं दर्शन देने के लिए वहीं आ जाऊंगा। तो भगवान अपनी लीलाएं करने जाते थे, एक बार भगवान ने कोकिल बनकर, मतलब कोयल बनकर के उनको दर्शन दिए, इसी के कारण उसका नाम कोकिला वन पड़ा। तो वो जो कोकिल वन है, कोकिला वन, वो कृष्ण के कारण है, शनि के कारण नहीं है। शनि तो अभी कुछ 50 साल 100 साल पहले लोगों ने वहां मूर्ति लगा दी, लेकिन वो स्थान है व्रजमंडल 84 कोस के अंदर कोकिला वन, बहुत दिव्य स्थान। तो वहां की ये लीला है कोकिला वन की। तो कोकिला वन में जब मैंने सुना नहीं था कोकिला वन के बारे में, जब हम कई 15 साल पहले छोटे होते थे इस भक्ति के, इसमें अभी भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मता था तो किसी ने जब बताया यहाँ एक कोकिला वन है, तो उस टाइम हम कोक पीते होते थे ना कोक, तो मुझे लगा कि शायद कोई फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, कोक 11 है ना, जैसे होता है ना 32 फैक्ट्री 32 माइलस्टोन, तो मुझे लगा कोक बोल रहे कोक 11 है ना, तो मैंने कहा कोक 11 चलते हैं, कोक 11। तो दिस इज हाउ वी रीच टू कोकिल वन, कोकिला वन पहुंचे। तो कोकिला वन जाके फिर वहां मिले, भक्तों से मिले, पुस्तकें पढ़ी, भक्तों से पूछा, तब समझ में आया खाली यहाँ शनि नहीं, यहाँ पर भगवान का प्राकट्य है, जहां भगवान है। तो इस प्रकार से कोकिला वन में सुबल और कृष्ण एक निकुंज के अंदर, निकुंज मतलब गहरा वन, जैसे जैसे गहवर वन, गहवर वन मतलब बहुत गहरा वन, उसके अंदर चारों तरफ पत्तियां पेड़ पौधे सब है, और बीच में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बैठे हैं सुबल के साथ में, और सुबल उनकी बांसुरी सुन रहा है। अब बांसुरी सुनते 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 उनको लगा ये जो बांसुरी है कृष्ण के पास बड़ी स्पेशल बांसुरी है, जब उनको राधा रानी को पुकारना होता है तो उसमें एक स्पेशल ट्यून जाती है, जैसे हमारे मोबाइल में सबके नंबर होते हैं, जिसको बुलाना होता है उसका नंबर मिलाते हैं तो पर्टिकुलर गाय को बुलाना हो तो एक अलग धुन निकालेंगे, उस नंबर पे गाय को कॉल करेंगे गाया जाए। जब राधा रानी को पुकारना होता था तो स्पेशल फ्लूट बजाते थे, वो मैं तो नहीं बजा सकता, बजाऊंगा तो बेसुरा हो जाऊंगा, पर वो कृष्ण की फ्लूट थी और उसकी स्पेशल आवाज जा रही थी राधा रानी तक, और राधा रानी बरसाना में सुन रहे हैं कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। अब कभी कभी आपने थोड़ा सा फिल्मी सीन देखे तो जो प्रेमिका होती है उसके पिता जब उसे रोक लेते हैं तो अपने कमरे में फोन बजता रहता है, मिस्ड कॉल आती रहती है, फोन पिक नहीं कर सकती, वो उठा करके बोलेगी तो पूछेंगे कौन है, किससे बात कर रही हो। तो यहां पर जटिलता के साथ बैठी थी उनकी सास, और कुटिलता के साथ बैठी थी ननद, और राधा रानी बैठी थी और बांसुरी बज रही थी, कॉल आ रहा था लेकिन मिस्ड कॉल जा रहा था, क्योंकि है ना कृष्ण के पास वो है, बोल जा नहीं सकती है जटिला कुटिला। राधा रानी चाहती तो दिव्य स्त्री है, दिव्य है, लेकिन वो चाहती है कि लोक व्यवहार का पालन करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, ये बड़े सिद्ध हैं, बड़े दिव्य हैं, परंतु फिर भी ये लोग वो लीलाएं नहीं करते सबके सामने, जो लीलाएं लोगों को जो है ना कह दे अरे बड़े ये सब तो बड़ा प्रचार नहीं करते उन लीलाओं का, लोक व्यवहार के कारण एकदम जैसे नया साधु होता है वैसे रहते हैं। तो इनकी गोपनीय लीलाओं के बारे में इनके जो गोपनीय भक्त होते हैं वही बता सकते हैं, तो इसलिए गोपनीय भक्तों ने इन लीलाओं को लिखा है कि इस प्रकार से राधा रानी चुपचाप लोक व्यवहार के लिए जटिला कुटिला के बीच बैठी हुई। कृष्ण भगवान ने कहा सुबल तू बैठा बैठा सुन रहा है बांसुरी, देख कितनी मिस कॉल चली गई उधर, कितनी बार मैंने पुकारा उनको लेकिन राधा रानी आई नहीं। भगवान प्रभु जी को भजन बजाते ना मिस कॉल वाला, क्या भजन है प्रभु जी, हाँ राधा ने मारी मिस कॉल, कृष्णा बोले हेलो हेलो, कन्हैया बोले हेलो हेलो, तो इसमें उल्टा हो रहा है, कृष्णा ने मारी मिस कॉल, राधा बोल नहीं पा रही है हेलो हेलो, है ना, तो उस प्रकार से तो हेलो हेलो भी नहीं बोल पा रही है, पिक भी नहीं कर पा रही है, और बड़ी अंदर से ना ऐसा विकार ऐसे आ रहा है, मतलब कि छाती जैसे कहते हैं ना फट जाएगी। कभी कभी बच्चा स्कूल से लेट हो जाता है तो माँ उस प्रेम को समझ सकती है कि घूम रही है, या बच्चा लेट हो जाता है तो पिता रात को 11-11 बजे बाहर आके देखता है बेटा आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। वो प्रेम कृष्ण को भी है और राधा रानी को, दोनों मिल नहीं पा रहे और दोनों के अंदर इतना परेशानी का और पीड़ा हो रही है, और कृष्ण के साथ तो इतनी पीड़ा हुई कि बोलने लग गए हे राधिके, क्या बोलने लगे हे राधिके, राधे राधे, बोलते बोलते मूर्छित होकर गए, मूर्छित हो गए। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, उत्तम प्रेम जब आता है, चेतन महाप्रभु जो कृष्ण कृष्ण कहते थे जगन्नाथपुरी में, अष्ट सात्विक विकार दिखा के मूर्छित हो जाए, मूर्छित हो जाना, एक मूर्छित होता है आदमी ने खाना पीना नहीं खाया मूर्छित हो गया, लेकिन एक मूर्छित होता है जब उत्कृष्ट प्रेम होता है तब भी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। तो इस प्रकार से कभी हमें समझना चाहिए कि ये लीलाएं इतनी सरलता से समझ आने वाली नहीं, इनको बार बार सुने, बार बार पढ़े, बार बार सुने और इनकी शिक्षाओं को अपनाएं, तब हो सकता है कि कभी कृष्ण राधा रानी की कृपा हो हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से मूर्छित हो गए तो सुबल बोला ये तो बिगड़ गई बात, कृष्ण बेहोश हो गए, मैं तो आया था लीला देखने के लिए राधा कृष्ण की, ये सुबल बोला ये तो खुद ही मूर्छित हो गए, राधा रानी आ नहीं रही क्या करूं। तो उसने कान में बोला राधा राधा, कान हाँ, कृष्ण दोबारा उठ के बैठे कहाँ है राधा, कहाँ आ गए क्या, उन्होंने कहा नहीं आई तो नहीं है, तुम बेहोश हो गए थे तुम्हारे चक्कर में मैं टेंशन में आ गया था। तो कृष्ण का तो फिर खड़ा खड़ा क्या देखता है, जा राधा रानी को बुला के ला, तू तो जानता है ना हर निकुंज लीला के अंदर तू योग माया वृंदा देवी तुम लोग मिलके ही मेरी लीलाओं को संपूर्ण कराते हो पौर्णमासी, तो तुम ये लीला पूर्ण कराओ जाओ। सुबल बोला कि अच्छा कृष्ण जाता तो पर जटिला से मुझे भी डर लगता है। तो बोले कोई बात नहीं जाओ। तो फिर कृष्ण का लेकर के वो चल दिए, और जटिला गेट के बाहर नंद गांव से दूर एक स्थान है जावट, जावट ससुराल है राधा रानी की, जहां राधा रानी अभिमन्यु जटिला कुटिला रहते, आज भी उनका विग्रह है जटिला कुटिला अभिमन्यु। तो बाहर डंडा लेके बैठी थी कि आने नहीं दूंगी अंदर किसी को भी, ना ऐसे ना जाने दूंगी राधा रानी। राधा रानी बाहर अंदर से पूरा उदास होके, बाल बिखरे हैं, आंखों से आंसुधारा बिखर रही है और रो रही है। ललिता विशाखा सखिया कह रही कोई बात नहीं कल मिल लेना, जटिला कहीं चली जाएगी तब चले जाना, कोई बात नहीं, सांत्वना दे रही। उधर से सुबल आया घूमने लगा, बाहर घूम रहा है, जटिला ने देखा बोला इधर आ, कैसे इधर, तुम लोग तो कभी इधर आते नहीं, कैसे आना हुआ इधर। ओ नानी 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 करे, नानी वो हम तो है ना इसलिए आए थे कि हमारा वो गैया चराने गए टेर कदम, तो हमारा बछड़ा गुम हो गया, तो बछड़ा ढूंढने आए बछड़ा। तो है ना वो बोली, सच में बछड़ा या फिर कोई और? तो है ना बोले, नानी आप पुलिस वाली हो कि नानी हो, है? इस तरह के क्वेश्चन पूछती हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारा सच में बछड़ा। बोले देख तेरा मुंह कितना लाल है, वात्सल्य प्रेम आ गया सुबल को देखते ही, कहा तेरा मुंह कितना लाल है, कुछ ठंडा पानी पी ले, अंदर चला जा, अंदर बैठ जा, उसके बाद तू बछड़ा आ जाएगा शाम को, फिर संध्या को तू चला जाइए। ठीक है नानी। तो जाऊं अंदर? बोले कितनी जल्दी काम बन रहा है। हाँ जाऊं अंदर? कह रहा हाँ। अंदर पहुंच गया, अंदर पहुंचा देखा बहुत बुरा हाल है, राधा रानी रो रही हैं, ललिता विशाखा समझा रही हैं, और कुटिला गलती से पानी भरने के लिए गई हुई थी, एक और जो हमारा क्या था शत्रु इधर से गायब है, तो वो बात बन गई। लेकिन जटिला जो है वो बाहर बैठी है गेट पे, जाऊंगा राधा रानी को लेके तो जाऊं कैसे। राधा रानी के पास गए, राधा रानी को बोला, राधा रानी कृष्ण जो है ना तुम्हारे लिए पीड़ा में कातर हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मूर्छित होकर गिर रहे हैं। राधा ने बोले तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मेरी स्थिति देखी है, मैं भी तो नहीं मिल पा रही हूं उनसे, तो जाओ ना। कहीं जाऊं कैसे, ये बैठी है ना जटिला जटिल। तो उन्होंने कहा कि क्या करे क्या करे, सोच रहे। राधा रानी कहती है सुबल तुम तो आइडिया एक्सपर्ट हो, आइडिया कंपनी के हेड हो, है ना, हैव एन आइडिया, तो आइडिया लेके आओ अपना, कुछ नया चमत्कारी कुछ विचार लाओ जिससे मैं जाऊं मिलने के लिए। कहा कि सोचता रहा फिर उसने कहा, आपको याद है चंद्रभानु महाराज और वृषभानु महाराज की आपस में क्या चर्चा होती है, क्या कि राधा और कृष्ण देखने में, राधा और सुबल देखने में एक जैसे दिखते हैं। वृषभानु की और चंद्रभानु तो फैमिली लीनेज है, हेरिडेटरी होता है, भाई बहन की शक्ल मिलती है। तो कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरे से बहुत मिलती है, चंद्रभानु महाराज बोलते हैं मेरे पिताजी और आपके पिताजी वृषभानु महाराज कहते हैं मेरी और हम दोनों की शक्ल। कहा हाँ, तो ऐसा करते हैं, कान इधर लाओ, क्या करना है, करना यह है कि तुम बन जाओ सुबल और मैं बन जाता हूं राधा। तो राधा रानी बड़ी अच्छी बात है, इतना भी हंसी भी कभी होता है, तुम कैसे बन जाओगे, मैं हूं स्त्री तुम हो पुरुष, मैं हूं लड़की तुम हो लड़के। रो बोल सुबल बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी लीलाएं करवा दी कभी कोई पकड़ पाया, फिर करवा देंगे। कहा भूल गई हो राधा रानी क्या, जटिला को कम दिखता है, दिखता तो है पर धुंधला दिखता है। तो कहा फिर, कहा ऐसा करेंगे कि कुछ नकली बाल मेरे लगा देंगे और आपके बालों को मेरी पगड़ी के अंदर दबा देंगे। तो राधा रानी के बालों को फोल्ड किया गया ब्यूटी पार्लर में जैसे होता है ना, यहां बांध दिया और यहां पगड़ी बना दिया पूरा सुबल के जैसी। राधा रानी बोली ये सब तो ठीक है, माला वाला भी पहन ली, लेकिन मैं तो स्त्री हूं ना, मेरे स्तन मेरे वक्ष स्थल देख करके वो बोल देगी बहू रानी कहां जा रही हो, फिर क्या करूंगी। कहा कि इसका भी हमारे पास है, मैं बछड़ा ढूंढने के लिए यहां आया था, एक बछड़ा मैं पिछले दरवाजे से ले आता हूं, बछड़ा पकड़ के जाना, बोलना नानी मिल गया, बस इतने में काम हो जाएगा, ये कोड वर्ड है। तो बछड़ा पकड़ के ले आया और लाके दे दिया राधा रानी, राधा रानी ने पकड़ लिया और जटिला के पास जाने में कांप रही अंदर से। और जटिला डंडा ऐसे ऐसे कर रही है, हाँ कौन तो बोले सुबल। तो बोली बात बन गई, पहचानी तो नहीं, हाँ क्या हुआ कहाँ जा रहा है। बोली नानी बछड़ा मिल गया, कोटवट बोली, नानी ने पैर पीछे के लिए जल भाग यहां से तुरंत। ओ राधा रानी खुशी है और बछड़ा लेकर के भागती है, चले जा रही है। तो है ना अंदर, लेकिन इधर तो मुक्त हो गया, एक जीव फंस गया अंदर। कह रहे अभी पति देव आ गए अभिमन्यु, और वो कहेंगे चलो तो मैं तो स्त्री नहीं हूं, तो यहां तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, मैं क्या करूं। तो राधा बाल लगा दिए, नीले वस्त्र पहना दिए, नकली उनको ब्लाउज साड़ी वगैरह जो पहनती माताएं, गोपी ड्रेस वगैरह चोली वोली सब पहना दिया, वो सब पहन के बैठे हैं, लेकिन है तो पुरुष तो घबरा तो रहे अंदर से, वैसे ही उनकी ना अदाएं ना वैसा शक्ल मिलती है खाली। तो तिलक विलक बिंदी बिंदी चूड़ी वूड़ी पहन के लग रहा है कि हाँ राधा रानी बैठी, और बाल बिखेर के उसी अवस्था में बैठ गए। तो है ना अब ये राधा रानी भाग के जा रही है कृष्ण के पास बछड़ा लेके। तो कृष्ण बैठे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं बेकार एकदम, बेकार एकदम, ये एकदम मेरा मित्र सबसे बेकार है, कुछ काम का नहीं है, इसको भेजा था राधा रानी को लाने के लिए, अकेला चला आ रहा है बछड़ा लेकर के, है ना, ये भूल गया होगा वहां पर, खेलने लग गया होगा, खाने लग गया होगा। वापिस आए, पास आए, कृष्ण के पास आ गई राधा रानी, कह रहे सुबल तू कैसा मित्र है, एक सेवा नहीं कर पाया श्रीमती राधा रानी, राधे को आज तू मुझसे मिला नहीं पाया। तो है ना राधारानी अंदर से तो प्रफुल्लित रोधी कृष्ण के पास लगे हूं, लेकिन और जूस निकाल रहे नींबू पानी का और दबा दबा के लीलाओं को रसमंजन रस स्वादन कर रही है। तो कहती है कि हाँ ये लो, ये जो मेरा बछड़ा है, ये बछड़ा मुझे ढूंढने गया था, बछड़ा मिल गया। राधा रानी की जो सास है जटिला, वो इतनी जटिले आने नहीं दे रही है। तो बोले तू तो इतना आइडिया एक्सपर्ट है, कुछ तो आइडिया लगाता है ना। हाँ मैं क्या करूं। और ये कहते कहते ना कृष्ण आंसुओं से ऐसे रोने लग गए और जमीन पे गिरने लगे। जैसे ही गिरे राधा रानी ने कहा कि ये ना होता है ना जैसे वो पेंटीन का एड आता है उसमें बाल ऐसे उछालते हैं, तो राधा रानी ने अपनी पगड़ी को ऐसे उछाला, बाल ऐसे निकाले, बछड़े को साइड छोड़ा, बछड़ा मां करता हुआ इधर चला गया। और राधा रानी ने कहा ये लो तुम्हारी राधा रानी तुम्हारे सामने आ गई है। और कृष्ण ने कहा अरे वो गए, गले लगा लिया पूरा का पूरा। और बोले आ वाह सुबल वाह, तेरी जय हो, तेरे कारण आज मेरे को राधा रानी का संग प्राप्त हुआ है। अलिंगन कर लिया पूरा, दोनों निकुंज में बैठे हैं और शक्ति शक्तिमान जब मिल जाते हैं तो एकदम जोश प्रकट हो जाता है। वो जोश प्रकट हो गया और बहुत रस स्वादन कर रहे हैं उस लीला का। और इधर सुबल बेचारा फंसा बैठा है। तो सुबल ने कहा कि निकलने का कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो कहा सास से, पहले बोलने लगा नानी नहीं ये तो क्या, सासू मां क्या जल भर लाऊं? तो है ना सास ने कहा पानी भी नहीं भर सकती अभी तक, जा जल्दी लेके आ। तो तुरंत ना साड़ी पहने हुए थे, भागे अपनी ललिता विशाखा को लेके यमुना के किनारे और भाग करके पहुंच गए यमुना के किनारे। और वहां जाकर के बीच में ही राधा रानी और कृष्ण वहां पहुंच गए निकुंज में। इधर बोले तुम पानी भरो, राधा रानी को जाके कहते हैं अब तो हो गई तुम्हारी संतुष्टि दोनों की, अब जाओ मेरी जान खतरे में है, मेरे वस्त्र दो और अपने वस्त्र वापिस ले लो। राधा रानी ने फिर जाकर के कृष्ण के सामने से हटी, अपने वस्त्र उतार के भाई को दिए और भाई ने अपने वस्त्र उतार कर राधा रानी को दिए। राधा रानी अपना वापिस मटके लेकर के जटिला के सामने बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है चुपचाप बोले मैं जल भर लाई, हाँ ठीक है जा अंदर। यहाँ लीला समाप्त हो गई। और वसंत तो है ना, यहाँ पर शिक्षा मिलती है हमको इस लीला से कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को कितने भी कठोर स्ट्रगल करनी पड़े उसे स्ट्रगल करनी चाहिए। राधा रानी गुरु तत्व है, शक्ति तत्व शिक्षा दे रही है, इतनी स्ट्रांग स्ट्रगल करो कृष्ण को पाने के लिए। जैसे कहा गया है भागवतम में अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेना यजते पुरुषम परम। भगवान जो पूरा पुरुषोत्तम परम भगवान कृष्ण है उनकी प्रसन्नता के लिए चाहे कामी हो या अकामी हो, अकामा वा सर्व कामा वो, चाहे मोक्ष का कामी हो, इस तीव्रेण भक्ति को करना चाहिए। प्रसन्नता हो किसकी, कृष्ण की। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति को तीव्रता से एकदम उत्कंठित होकर उत्साही होकर के हमें लीलाओं को करना चाहिए। कहने को तो मेरे पास बहुत सारी लीलाएं मुझे याद आती है, लेकिन आदेश जैसा भक्तों का होगा वैसे हम वर्णन कर सकते हैं। समय वैसे 9:50 है, आप ही बोल रहे हैं, मुझे बाकी नहीं बोल रहे, उदास हो गए बेचारे, दुखी हो गए। तो फिर एक लास्ट लीला सुना देते हैं तो छोटी सुनाएंगे, आपको ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे, 5 मिनट में लीला समाप्त, छोटी लीला, अंतिम लीला। और अंत लीला के बाद में फिर हम जो जाएंगे प्रसादम की आदि लीला जो करना चाहते हैं और हम लोग चले जाएंगे जो फास्ट कर रहे हैं 12 बजे तक और अपना जपा करेंगे। तो भगवान की जो सेवा है वैसे तीव्रता से करनी चाहिए। तो जावट से मुझे एक लीला याद आती है कि जावट में पौर्णमासी जो थी वो बहुत लीलाओं को ऑर्गेनाइज किया करती थी। तो इनके घर में जो इनके पति देव थे अभिमन्यु, इनको मथुरा में पोस्टिंग मिल गई थी किसी काम के कारण, ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मथुरा में कंस ने बोला कि तुम मथुरा आ जाओ, तुम्हारा आना जाना ट्रांसपोर्ट टाइम बहुत लगता है, तो तुम एक काम करो तुम चेंज हो। अब राधा रानी ने सोचा कि अगर अभिमन्यु जाएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, अब मैं चली गई तो फिर कृष्ण के साथ मेरी गुह्यतम लीलाएं कैसे होंगी, वृंदावन लीलाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, मथुरा जाना कैंसिल हो। तो पौर्णमासी से पूछा तो पौर्णमासी ने कहा ठीक है एक काम करो तुम ना, मैं कुछ गेम खेलती हूँ, मैं कुछ करती हूँ लीला को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आई और आकर जटिला से कहती हैं कि देखो एक बार घर सेटअप हो जाए, जावट में आपकी हवेली है इतनी बड़ी, मथुरा जाएंगे क्वार्टर मिलेगा गवर्नमेंट कंस का, उसमें छोटा सा कमरा होगा 10x10 का, कैसे रहेगा आपका परिवार, यहीं रहिए ना। कहा चाहती तो मैं भी हूं परंतु पोस्टिंग आ गई है तो क्या करे, जाना तो पड़ेगा। तो है ना वो बोले काम करो आप ना गौरी काली जो है पार्वती, गौरी की पूजा करो, गौरी की पूजा करने से क्या होता है, सारी मंशाएं पूर्ण हो जाती है। तो माताओं में देवी की पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो जटिला को ये बात बोली, जटिला बोली मैं तो नहीं व्रत कर सकती, बूढ़ी हूं, राधा रानी तुम जाओ और व्रत करो, गौरी मंदिर जाकर पूजा किया करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो राधा रानी ने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है। वैसे तो राधा रानी कृष्ण के अलावा किसी की पूजा नहीं करती है, लेकिन क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है मैं गौरी मंदिर चली जाऊंगी। तो अभी गौरी मंदिर जाने के लिए, जब जाने के लिए पहले दिन निकली तो रास्ते में कृष्ण आ गए, कहते मैंने सुना है मथुरा जा रही हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कृष्ण, आपको छोड़कर के मैं कभी जा सकती हूँ, इसीलिए मैं गौरी पूजा के लिए जा रही हूँ ताकि हमें जावट छोड़कर मथुरा ना जाना पड़े। तो वहां पर वो बोलते हैं कृष्ण, अच्छा आजकल तुमने हमको छोड़कर गौरी की पूजा भी शुरू कर दी है। राधा ने कहा कृष्ण कैसी बातें करते हो, आपके अलावा इस संसार में क्या कोई उपासनीय है मेरे लिए, पूजनीय है क्या मेरे लिए, मैं तो सिर्फ जा रही हूं ताकि आपके संग रह सकूं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो तुम गौरी पूजा, आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ा, ले गए निकुंज में, कहा चलो बैठकर यहां थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। तो जा रहे थे तो चंद्रावली जो थी उसको, गोवर्धन मल जो उसके हस्बैंड थे, गोवर्धन मल मतलब कुश्ती करते थे, मल्ल योद्धा थे गोवर्धन। तो गोवर्धन मल्ल जो थे गोवर्धन में बड़ी चर्चित थे, और चंद्रावली जो उनकी सखी थी कृष्ण की और राधा रानी की, हमेशा कंपैरिजन कंपटीशन की भावना में रहती थी। वो चंद्रावली के पति ने बोला मैंने अभी अभी देखा कृष्ण और राधा इधर से जा रहे थे। चंद्रावली, अच्छा। चंद्रावली की सखी थी पद्मा सखी, उसने कहा मैं जाती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और फिर जाकर जटिला को बताएंगे, खूब मजा आएगा अभिमन्यु, जटिला सब लोग के सामने ना खूब बेइज्जती होगी कृष्ण की राधा रानी की, फिर तो इसे मथुरा जाना ही पड़ेगा, चलो चलो। तो चंद्रावली चाहती थी राधा रानी चली जाए तो मैं कृष्ण के साथ थोड़ी गुहेतम लीलाएं कर लूं। तो इधर से पद्मा ने जाकर के देखा कि राधा कृष्ण बैठे हैं और चर्चा चल रही है, राधा से कह रहे हैं आओ तो मेरे पास बैठो, झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। पद्मा ने सारी डिटेलिंग कर दी जाकर अभिमन्यु को, अभिमन्यु कंस की पोस्टिंग पे जा रहा था कि उसने बुलाया है, रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना है। वो बोले तुम्हारी रिपोर्टिंग धरी की धरी रह जाएगी, अगर पत्नी हाथ से निकल गई ना तो सारी इज्जत चौपट हो जाएगी। कहा क्यों, कहा अभी अभी देखा कृष्ण के साथ जा रही। जटिला बोली मुझे इस कृष्ण से बड़ी नफरत हो गई है, ये हर बार हर रोज कुछ ना कुछ करके श्रीमती राधा रानी को ले जाता है। तो इस प्रकार से अभिमन्यु और जटिला भागते हुए पहुंचे। तो है ना यहां पर कृष्ण की और राधा रानी की, कृष्ण की जो सखी थी वृंदा देवी, वो बोली वृंदा देवी और राधा रानी की सखी ललिता देवी दोनों खड़ी थी वहां पर, और वो बोली कि अरे पता है पद्मा ने देख लिया है, वो चली गई है और जाकर बुला के ला रही है अभी, और सब लोग आने वाले हैं, आप लोग भागो यहां से। कृष्ण कहते हैं दुनिया हमसे डरती है, हम किसी से नहीं डरते। तो है ना, जब कृष्ण ने ऐसा डायलॉग बोला, बोले डायलॉग बाजी बाद में कर लेना, प्लीज भागो पकड़े जाओगे। कृष्ण बोले तुम चिंता मत करो। तो ललिता विशाखा चवल कर रही थी, एक पंखा कर रही थी, बोले चुपचाप अपनी सेवा करो, राधा कृष्ण बैठे थे। तो है ना तुरंत अभिमन्यु और जटिला, जब दुखी होता है व्यक्ति दूर से चिल्लाता है पकड़ो इसको, कृष्ण को पकड़ लो, कृष्ण 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 करते हुए भागते हुए आ रहे थे, और कपड़े भी उड़ रहे थे हवा में, दोनों भाग रहे हैं कुंज की तरफ। और जैसे ही पहुंचे वहां पर तो क्या देखते हैं, वहां पर कृष्ण भगवान ने सुन लिया, वो तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, कहा आ गए। तो है ना तुरंत क्या किया, राधा रानी को ऐसे करके धक्का दिया थोड़ा सा, राधा रानी घुटने के बल नीचे गिर गई, और जिस बेंच पे बैठे थे दोनों उस बेंच के ऊपर कृष्ण खड़े हो गए और अपने बालों को ना जो बंधे होते हैं मोर पंख निकाल लिया, बाल ऐसे करके खोल लिए, और ना क्या किया, और जीभ निकाल के खड़े हो गए एक टांग के ऊपर। और है ना, तो है ना वो जब आए दोनों जटिला और अभिमन्यु, तो राधा रानी ऐसे बैठी हुई थी, क्या हो रहा है ये देख रही थी, ललिता विशाखा भी चवर कर रही थी। तो है ना जटिला ही कहती है ये क्या है, तो राधा रानी बोली ये तो मैं भी सोच रही हूं क्या है। तो है ना फिर है ना राधा रानी बोली देखने, अभिमन्यु बोला अरे क्या माँ तुम भी ना राधा पे शक करती हो, अरे और क्या, गौरी पूजा के लिए आई थी तो काली काली माता खड़ी है बाल खोल के जीव नहीं। काली माता खड़ी है और देखो इनकी सखियां कितनी अच्छी हैं, देखो माता के ऊपर क्या कर रही हैं, चंवर कर रही हैं, पंखा कर रही हैं, कितनी अच्छी है। बेटी मेरा आज बड़े दिल को तसल्ली हुई, मैं तुझके ऊपर दोषारोपण करती थी, आज से मैं तुझे आजादी देती हूं, रोज इस निकुंज में आ और इस गौरी की पूजा कर, और फिर क्या हो जाएगा, हमें कृपा मिलेगी। तो है ना उन्होंने वहां पर वो आ गई पौर्णमासी, रस को और स्वादन कराने के लिए रस स्वादन कराने के लिए कहती हैं कि अरे लेकिन कैसे पूजा होगी, तुम लोग तो मथुरा चले जाओगे ना, तो फिर सेवा कैसे होगी गौरी की। तो है ना गौरी जो है ना बोलती है कृष्ण, देखो अगर तुम यहां से चले गए तो ये जो अभिमन्यु है ना, मेरे तलवार से इसकी गर्दन काटी जाएगी, इसके ऊपर बड़ी तगड़ी शनि साथे साथी चल रही, शनि की साढ़े साथी चल रही है। तो है ना जटिला घबरा, नहीं माँ नहीं माँ ऐसा मत करना, नहीं इसके कर्म ऐसे हैं इसको काटना पड़े, अपनी पत्नी को सताता है और तू भी सताती है, नहीं अब से नहीं सताएंगे, कभी भी नहीं सताएंगे, हर रोज इसको भेजेंगे, और तुम चिंता मत करो तुम्हें मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, कंस को भी मैं देख लूंगी। हाँ जटिला बोली, देखा गौरी पूजन बताया था पौर्णमासी, बिल्कुल ठीक है, आज पहली बार ऐसी देवी देखी है जो मूर्ति के साथ साथ बोलती भी है वरदान भी देती है, बेटी तो इसी की सेवा करती रहे हमेशा। तो इस प्रकार से भगवान की जो ये लीलाएं हैं गुह्यतम, बहुत आनंद देने वाली है, इनका भंडार है। कभी हम बरसाना वृंदावन यात्रा में जाते हैं प्रभु जी के साथ, तो प्रभु जी के आदेश से हम खूब सारी लीलाएं वहां पर चर्चा करते हैं, तो कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेगा, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पंच तत्व गौणताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव भगवान की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अमोगला प्रभु, शचीपति प्रभु हैं यहाँ पर सीनियर डिवोटीज, अगर आप कुछ वर्णन करना चाहते हैं राधा रानी के बारे में या मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी प्लीज।
अरे हरे कृष्णा प्रभु जी ने इतने समुद्र भर दिया है लीलाओं का कि उसमें से निकलना मुश्किल है। एक छोटी सी मुझे घटना याद आ रही है, जो प्रभु जी ने बताया कि वृष भानुवर जो हैं गए थे कृतु मुनि के पास, तो ब्रह्मांड पुराण में आता है कि कृतु मुनि ने बहुत, हम इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत शुभ सूचना है ये कि कृतु मुनि ने जो मंत्र दिया था वृष भानुवर को, उन्होंने कहा था इति इति षोड शंकम त्रिकाले कलमस पहम नातः परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो श्लोक मिलता है कलि संतन उपनिषद में, उसमें से सिर्फ दो शब्दों को चेंज किया कृत मुनि ने, उसमें आता है इति षोड शंकम नाम कलि कलमस नाशनम, और इसमें आ गया त्रिकाले कलमस पहम नातः प्रतिरूपाय, उसमें था सर्वेदेशु दृश्यते, इसमें उन्होंने कर दिया विद्यते। तो हम इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत शुभ सूचना है कि कृतु मुनि ने हरे कृष्ण मंत्र का जप किया, जिसके कारण उन्हें राधा रानी प्राप्त हुई। तो अगर हम भी हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान से जप करेंगे तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें अवश्य मिलेगी। हरे कृष्ण
हरि हरि बोल।
मैंने सब कुछ बहुत ही अद्भुत बताया प्रशांत मोहन प्रभु जी ने, और गौर मोहनडे भी चाहते थे कि श्री प्रभुपाद जो उनके सुपुत्र हैं वो राधा रानी के भक्त बने, और एक समय श्री प्रभुपाद जी एक व्यक्ति के साथ बैठे जो वृंदावन से थे, और एक माता जी थी साथ में। तो प्रभुपाद जी ने पूछा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है पूरी सृष्टि में, तो जो वृंदावन से जो भक्त आए थे उन्होंने कहा कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी ने कहा रॉन्ग, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कृष्ण नहीं है। तो फिर जो माता जी बैठी थी उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद ने कहा नाउ यू आर 50% राइट। तो फिर प्रभुपाद ने कहा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इस पूरी सृष्टि में है श्रीमती राधा रानी, लाइक दैट। चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि राधा रानी का भाव लिया तो 50% यू आर 50% राइट, पर कृष्णा इज नॉट द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी। शी इज मोर ब्यूटिफुल देन कृष्णा, शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, शी इज मोर पावरफुल देन कृष्णा बाय द विल ऑफ कृष्णा। कृष्ण की इच्छा से वो कृष्ण ज्यादा सुंदर हैं, कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली हैं, और कृष्ण से ज्यादा दयालु हैं। घर में भी मम्मी ज्यादा दयालु होती हैं, बच्चों के नंबर खराब आते हैं, पिताजी तो ब्लैक बेल्ट होते हैं राइट, कुंफू कराटे में नहीं दूसरी तरह वाले, लेकिन बच्चे भागते तो माँ के पीछे भागते हैं मम्मी बचा लो पापा से। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, राधा रानी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, और वो कृष्ण की इच्छा से ही है, कृष्ण की इच्छा से राधा रानी ज्यादा दयालु है। सो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम राधाष्टमी यहाँ मना पा रहे हैं, और हमारे बीच में कितने सारे डिवोटीज हैं जो कि राधा रानी को इतने सुंदर तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं, दिस इज रियली अमेजिंग। तो द्वारका मंदिर में जो डिवोटीज जुड़े हुए हैं आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसा मॉर्निंग में मैं कह रहा था कि हमारे डिबल कृपा बोनंजा है यहाँ पर, रुक्मिणी जी भी हैं और श्रीमती राधा रानी भी हैं, इसलिए हमारे यहाँ रुक्मिणी द्वादशी मनाई जाती है और राधाष्टमी मनाई जाती है। सो वी हैव बोथ द डीटीज, बोथ द पर्सनैलिटीज हेयर। हैप्पी राधा कॉन्शियस राधा अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हमारी सोसाइटी का नाम जो है ना एक्चुअली राधा रानी के नाम पे है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस कौन है, किसके पास कृष्णा कॉन्शियसनेस है? टॉप मोस्ट तो राधा रानी के पास है। तो हमारी सोसाइटी का नाम भी राधा रानी के नाम पर ही है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्लीज शाम को भी रहेगा, 6:30 बजे प्रोग्राम रहेगा, सो प्लीज काइंडली बी देयर ऑन टाइम। जैसा मैंने मॉर्निंग बताया था, आज ऑफिस जाना, बिजनेस में जाना बहुत अशुभ है, ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप सड़क में जा रहे हैं कुछ हो जाए, है ना, भगवान ना करे। तो आप सुरक्षित रहो, नाम जप करो, हरी कथा सुनो, ये आज के दिन नहीं करना चाहिए, आज के दिन ऑफिस नहीं जाना, स्कूल और कॉलेज, पैसा कमाना, ये सब आज भूल जाओ सबके सब, और आज ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए और राधा रानी की महिमा का स्मरण करिए। आज जो प्रशांत मुर्मू ने दिया इतना सुंदर तरीके से, सो वी शुड रिकॉल दीज पास्ट टाइम्स अगेन एंड अगेन, एंड दिस हाउ वी शुड स्पेंड टुडेज ऑस्पिशियस डे। और हम सब गौड़ीय वैष्णव है, तो इसलिए राधाष्टमी हमारे लिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो प्लीज स्टे एंथुजियास्टिक, स्टे जॉयफुल, स्टे कृष्ण कॉन्शियस, स्टे राधा रानी कॉन्शियस। श्री प्रभुपाद की जय।
वंदेहं श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश।
दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन आई चैंट।